السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو یہاں آ کے بیٹھنے کی توفیق بخشی اور ہم اسی کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ سب بہت محنت سے آئے ہوں گے، بہت ساری مصروفیات کو آپ نے چھوڑا اور پھر آپ یہاں پہنچے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں آ کے بھی کچھ نہ پا سکیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس مصروفیت کے وقت میں اس کی بات کے لیے جمع ہیں. لیکن جب شیطان ہمیں پچھلے مرحلے میں ناکام نہ کر سکا، بہت ساری تاویلات اس نے آپ کو سجھائی ہوں گی، مت جاؤ، کوئی کام ہے، یہ کر لو، ابھی کچھ اور کر لیں، لیکن الحمدللہ آپ ان تمام چیزوں کو پار کر کے یہاں پہنچ گئے. گویا کہ آپ نے شیطان کو ہرا دیا اور آپ جیت گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شیطان میں کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اچھی بات کی ہے یا بری کی ہے، وہ چونکتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا، ہارتا نہیں، یہاں آ کے بھی آپ کو ڈسٹرب کرے گا. کبھی کسی چیز کی طرف دیکھنے کی توجہ ڈالے گا، دیکھو وہ دیکھو کیسی چیز ہے. پھر کوئی باہر سے آ رہا ہوگا تو وہ آپ کی توجہ ڈالے گا، اچھا پیچھے دیکھو ذرا کون آیا ہے. پھر اس کو دیکھ کے دل چاہے گا اب سلام کر لوں. کبھی کسی ایسے بندے کے دل میں خیال ڈال دے گا جس نے کبھی آپ کو فون نہیں کیا ہوگا، وہ بھی عین وقت پہ آپ کو فون کرے گا. تو آپ نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. کوئی چیز جو آپ کی توجہ کو لے لے، فوراً سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کا ایک اور وار ہے جو مجھ پہ ہو رہا ہے، تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تاکہ ہم اپنی بات کو سن سکیں اور اس کو پھر اپنے دل میں بٹھا سکیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 سے لے کے 18 تک کی تلاوت کی. اس کی روشنی میں آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ ایسا پیارا موضوع ہے کہ جس کی مجھے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آج ہم کس موضوع پہ بات کریں گے. اپنی بات کو کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ اس آیتوں کا تھوڑا سا اردو میں ترجمہ کر دوں، تاکہ جو بھی بات ہم کریں تو آپ کو یقین ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک ہمارا دل نہیں مطمئن ہوتا، بات کے سننے والے پہ ہمارا اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں سے کر رہا ہے، تو ہم بات کو بعض اوقات سن کے بھی نہیں سن رہے ہوتے. اور میری اور آپ کی بات تو نہیں چلے گی، بات تو اللہ کے قرآن کی یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ یعنی جانے بوجھے نہیں پتہ نہیں تھا غیر ارادی طور پر کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پہلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ لوگ جن سے گناہ ہوتا ہے اور وہ گناہ نادانی میں ہوتا ہے انجانے پن میں ہوتا ہے وہ کیا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن صرف خلاصے کے طور پہ کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ گناہ اس سے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ باہر سڑک پہ چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مٹی پاؤں پہ ضرور پڑتی ہے, لیکن اس مٹی کو ہم اپنے قدموں پہ لگا نہیں رہنے دیتے. اگر کہیں سے کیچڑ تھوڑا سا ہمارے برقعے کے اوپر لگ جائے, ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے, لگ سکتا ہے, ممکن ہے, لیکن ہم گھر آتے ہی کیا کرتے ہیں, فوراً اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ چلو اب لگ گیا تو لگنے دو. ایسا کہنا ایک انسانی طبیعت کی گندگی اور اس کی صفائی پسند نہ ہونے کی دلیل تو ہو سکتی ہے, ورنہ انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز کہ جو ہی اس کے کپڑے پہ کوئی داغ لگتا ہے وہ فوراً اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بدبودار چیز اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ فوراً اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سب سے بڑی بو گناہوں کی بو ہے. سب سے گندی چیز اس دنیا میں گناہ ہے. کیوں؟ کہ یہ گناہ ہمیں ہمارے مالک سے دور کرتے ہیں. یہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں ہماری اس جنت کے بیچ میں جس کو پانے کے لیے ہم صبح و شام دعائیں کرتے ہیں, اور یہ گناہ اس شیطان کے راستوں کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں کہ جس کو بند کرنے کے لیے ہم کئی بار دن میں کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں, نافرمانیاں ہو جاتی ہیں, لیکن نہ سمجھی تھی. نہ سمجھی کئی طرح کی ہو سکتی ہے, یعنی مثلا پہلی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ. یقین کیجیے آج کے اس دور میں بھی اتنے علم کا دور دورہ ہے, تعلیمات عام ہیں, قرآن, کیسٹ, سی ڈی, بکس, بہتان, ہر چیز کی بہتات ہے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک بہت سارے حرام اور حلال کے مسئلے بھی نہیں معلوم. اس کو ایک جہالت کہتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اس جہالت کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, یہ ان سے ایک الگ سوال کیا جائے گا. لیکن جن کو اس گناہ کا گناہ ہونا معلوم ہی نہیں تھا, اس چیز کے حرام ہونے کا حرام ہونا معلوم ہی نہیں تھا ان کے بارے میں, یا پھر جہالت وہ بھی ہوتی ہے کہ اس گناہ کی شدت نہ معلوم ہو. سب کو پتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے لیکن شدت معلوم نہیں, اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ واقعی اتنی بڑی بات ہے. لاوالی پن کہہ لیں, لاپرواہی کا انداز کہہ لیں, یا اس کے بارے میں بہت کچھ جان کے بھی انسان انجان بنا رہے, لیکن ثم یتوبون من قریب, گناہ ہوا, خیال آ گیا, ہوش میں آ گیا, یہ میں نے کیا کیا, فوراً او اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گی. فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ حق ہے. یعنی اگر ایسوں کی توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو کل قیامت کے دن وہ اپنا یہ حق وصول کر سکتے ہیں کہ اللہ میرا وہ گناہ نافرمانی, وہ نہ سمجھی تھی, وہ جہالت تھی, کیوں نہیں معاف کیا؟ کرے گا, جیسے ذمہ فرض ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو کوئی بھی فرض نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا. یہ ہے پہلا درجہ. ٹھیک ہے, اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور نہیں ہے ان لوگوں کی کوئی توبہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں. پتہ بھی تھا کرتے رہے, معلوم بھی تھا کرتے رہے, اس کی شدت بھی معلوم تھی, ساری زندگی اسی میں گزر گئی. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے, بستر مرگ پہ ہے, موت کا فرشتہ سامنے دیکھ لیا. قال انی تبت الان, کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں. موت کے فرشتے کو دیکھ کے, غرغرے کو دیکھ کے, جب حجاب کھل گیا, جب برزخ کا پردہ چاک ہو گیا, وہ سارے معاملات جو آج غیب کے مام پردے میں چھپے تھے وہ سامنے کھل گئے. ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی ایک چور چوری کرے اور سامنے سے پولیس کو آتا دیکھ لے, और पुलिसमैन को आते ही देख के कह दे, ओ मुझे माफ कर दो मैंने चोरी की, ओ मुझे माफ कर दो मुझे ना, क्यों? उसका ख्याल है कि इस जुमले के कहने से मैं छुट जाऊं और मेरी कैद ना हो। कौन सा पुलिसमैन है जो उसको छोड़ेगा? वो कहेगा ये तो तुम अपनी जान छुड़ाने के लिए कर रहे हो, वरना तुम्हारा इरादा नहीं था। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं। ये तौबा तो फिरौन ने भी की थी कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं मूसा के रब पे ईमान लाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है, मालम युगरगिर, यहाँ तक के गरगराना शुरू हो जाए। गरगरा क्या होता है? मौत की हिचकियाँ, जब मौत के असरात दिखते हैं, नजा का आलम। कुछ सात बाज जगाते हैं, 3 सात मौत से 3 सात 3 घड़ियां पहले तक अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता है बंदे की। और वो कितनी सात लंबी है अल्लाह को मालूम है। ऐसे बंदे की तौबा कबूल नहीं। तीसरे किस्म के लोग कौन हैं? उससे भी वर्स्ट, उससे भी गिरे हुए। वो कौन है? वला, और ना उनकी क्या तौबा कबूल नहीं। किनकी? वलल्लज़ीन यमूतून वहुम कुफ्फार, कि जिनको मौत के वक्त में भी तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई और कुफर की हालत में मर गए, शिर्क की हालत में मर गए, रब के साथ दूसरों को जोड़ते जोड़ते मर गए, दूसरों से उम्मीदें बांधते बांधते मर गए, दूसरों से औलादे मांगते मांगते मर गए, दूसरों की ताजीम करते करते उनको खुदाई के बराबर करने वाले, इनकी भी तौबा कबूल नहीं। बल्कि ऐसे उलाइकातना लहुम अजाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक अजाब किया है तैयार। तो अजीज साथियों, इन 3 आयात में कुरान पाक में बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुनाह और तौबा का असर दिखाया गया। कौन से गुनाह? जिसको जानबूझ के किया उसकी तौबा फौरन कर ली, कबूल है, अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये हो नहीं सकता कि कोई इंसान गुनाह ना करे। फिर गुनाहों की भी किस्में होती हैं। बाज़ गुनाह वो होते हैं जिसको सगीरा गुनाह का नाम दिया जाता है, जिसमें इंसान का शऊर का दखल कम होता है। हो गए, वही बात है ना, जैसे आप चलते गए रास्ते में खुद ही मट्टी लग गई, खुद ही गंदगी चिपक गई। लेकिन कुछ गुनाह हैं जो कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह ऐसे हैं जैसे खुद कोई कीचड़ के अंदर पाँव मार के अपना पाँव गंदा कर ले और फिर कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा गुनाह। बड़ी लंबी फहरिस्त है उन गुनाहों की। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इब्ने आदम कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो फौरन तौबा कर ले तो वो नुक्ता मिट जाता है। आप इस चीज को घर जाके एक एक्टिविटी के तौर पे कीजिएगा। एक बिल्कुल प्लेन सफेद कागज लें, दूर से देखें करीब से देखें बिल्कुल सफेद होगा। अब आप मार्कर लें और उस पर एक छोटा सा नुक्ता लगाएं काले रंग का। दूर से देखेंगे तो फिर भी वो कागज आपको बिल्कुल सफेद दिखेगा, ऐसे ही है ना, लेकिन करीब से देखेंगे तो आपको वो एक नुक्ता दिखेगा। फिर उसके बाद एक और गुनाह हुआ, एक और नुक्ता लग गया। तौबा नहीं करेंगे तो मिटता नहीं, वो नुक्ते जमते जाते हैं। अब वो जब आप 2, 3, 4, 10 हो गए ना, तब दूर से आप उस कागज को, सफेद कागज को देखेंगे ना, तो वो हिस्सा आपको ग्रेश दिखेगा, हल्का गदला गदला दिखेगा। करीब से तो आपको दिख रहा है, दूर से कम दिखेगा। और आप नुक्ते लगाते जाएं, करिएगा जाके जरूर, लगाते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तस्वुर ही नहीं होगा कि ये कभी सफेद कागज था। दूर से आप देखेंगे ये काले रंग का एक टुकड़ा। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, बल्कि उनके दिलों को जंग लगा दिया। यही है खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने दिलों को मोहरों में लगा दिया। फिर इंसान का दिल बंद होने लगता है। दुनिया में जब इंसान आता है, अल्लाह ताला बच्चे को फितरत पे पैदा करते हैं। ना वो यहूदी होता है, ना वो नसरानी होता है, ना वो मजूसी होता है, कोई उसका मजहब नहीं होता। उसका मजहब क्या होता है? इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम قال اسلمت لرب العالمين, इस्लाम। किस सेंस में इस्लाम? आज के मुसलमान वाला इस्लाम नहीं, नाम का इस्लाम नहीं, बल्कि इताअत, सबमिशन, सरेंडर करना। बच्चा फितरत के बहुत करीब होता है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को दुनिया में भेजने से पहले, बल्कि इस कायनात को बनाने के 50,000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे हाथ फेरा था। और उसके नतीजे में क्या हुआ, कयामत तक जो इंसान पैदा होंगे ना, उनकी रूहें सब रेत के जर्रों की तरह फैल गईं। तसव्वुर में लाएं, अब आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया जा रहा है कि ये कयामत तक पैदा होने वाली आपकी औलादें हैं, औलाद है आपकी, क्योंकि हर बंदा जो पैदा होता है वो हज़रत आदम की नस्ल में से ही है। अब वो रूहें जब सब जमा हो गईं तो अल्लाह सुबहाना ताला ने सबको मुखातिब करके एक वादा लिया था। आज भी सूरत आराफ में मौजूद है, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। सब ने, मैंने, आपने, इस महफिल में जितनी बहनें, जितनी बच्चियां, जितने बड़े बैठे, उन्होंने, इस पूरे कॉलोनी में जितने लोग हैं, इस शहर में जितने लोग हैं, इस मुल्क में जितने लोग हैं, और इस दुनिया में जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं और जितने क्यामत तक आएंगे, पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक, हम सब ने कहा भला क्यों नहीं, हाँ अल्लाह हम तुझे ही रब मानेंगे। अब ये जो इकरार था ना, ये वादा अहद, अल्लाह सुभान ताला ने हमारे जहनों में प्रोग्रामिंग कर दी। जैसे आपने, आज तो कंप्यूटर का दौर है ना, तो इन बातों को समझना कुछ मुश्किल नहीं। पहले दौर में जब ये मिसाल देते थे तो लोग कहते थे ये कैसे मुमकिन है, लेकिन आज आप देखिए कि जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर्स की, आप दो चार लफ्ज लिख के बस उसको फीड कर देते हैं अपने कंप्यूटर में, फिर क्या होता है, आप करके भूल जाएं, करने वाले को याद रहे ना रहे, लेकिन वो उस कंप्यूटर की मेमोरी में चले जाते हैं, होता कि नहीं ऐसा। इसी तरह तौहीद, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो उसकी अगली सिर है ना, लेकिन हर इंसान की फितरत में ये चीज डाल दी कि दुनिया में जाओगे तो रब एक ही है और जो वो कहेगा उसको तुमने मानना है। रब को रब मानने का ये मतलब नहीं है कि एक बुत है और उसको खड़े पूछते रहें और कहते रहो तुम बहुत अच्छे हो, तुम दी ग्रेट दिस। इसी तरह सिर्फ जुबान से ये कह देना सुबह शाम अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हक अदा नहीं करता। क्यों? कि आप कहते हैं अल्लाहु अकबर और वही रब बुलाता है दिन में 5 बार, हैया अलस्सला हैया अलफला, और हम सुनते ही नहीं, तो हमने कैसे रब को बड़ा माना? क्या ये रब बड़ा बना? रब की बात बड़ी नहीं हुई? ये ऐसे ही ना जैसे घर में कोई बुजुर्ग होती हैं तो आप सुबह शाम कहें कि अम्मा आप इस घर की बड़ी हैं, आपकी बात मानी जाएगी, आप बड़ी हैं, और वो जरा कह दे अच्छा बेटा ये पका लो, तो आप कहने ये नहीं हो सकता, पकेगा तो वो जो बच्चे चाहेंगे, अच्छा यहां ना जाओ इस वक्त, क्या जरूरत जाने की, तो आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं मैं मानूंगी, वैसे हैं आप इस घर की बड़ी। कितने दिन ये मजाक चलेगा? अगली दफा जब कहने लगेंगे ना ये बात तो जुबान रोक देंगी कि खबरदार, या तो मुझे ये कहना छोड़ दो या मेरी बात मानो। अल्लाह सुबहान ताला हमारी जुबानें नहीं पकड़ता, हम जो चाहे बोले बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों पे पर्दे तो बनाए, पपोटे, ये जो बंद है ना ढक्कन है, लेकिन जबरदस्ती नहीं बंद होते, आपके हाथ में उसका कंट्रोल दे दिया। क्यों? मुमकिन था ना कि अगर कोई गलत चीज हम देखने लगे एकदम ढक्कन बंद हो जाए, खबरदार अलाउड नहीं है, लेकिन नहीं होता। क्यों? कि तुम खुद अपनी मर्जी से बंद करो। मैं देखता हूं कि तुम बंद करते हो कि नहीं करते। इसी तरह आप देखिए कान, जिस्म का एक एक उज़ अल्लाह ताला ने हमारे ताबे कर दिया। आप देखिए कि आंखों के आगे तो ढक्कन है, कानों के आगे ढक्कन नहीं है, है? आप कह सकते हैं हम क्या करें, कान तो खुले हैं वो तो बंद नहीं होते, तो आप जाके आज भी किसी डॉक्टर की दुकान पे लगी हुई कानों की अंदर की तस्वीर देख लें, वो कैसी है, ये आपकी उंगलियों की पोरे, इसमें डालेंगे ना बंद होके ढक्कन हो जाएगा। या जलून असाब यहूं फी आजानिहिम, अल्लाह ताला ने काफिरों की बात बताई कि जब उनको अल्लाह के दीन की कोई बात सुनाई जाती है तो कानों में उंगलियां दे लेते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, ये भी हमारे इख्तियार में रखा, अगर कहीं ऐसे मौजूद हो जॉइंट ढकनों को बंद कर दो, इस पे रुई लगा लो, इस पे उंगलियां लगा लो, कुछ नहीं करो। तुम कैसे मजबूरियों के नाम पे गुनाह करते हो? कौन है दुनिया की ताकत जो तुम्हें कह के फलां चीज देखो, आंखें बंद कर लेते, बैठे रहते वहां आंखें बंद कर लेते। आप कहते हैं कान में आवाज पड़ती है, कानों के आगे उंगलियां दे लेते, दिल उस तरफ माइल होने लगता है, दिल में कोई अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते। कभी इंसान बचना चाहे तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो बच सके? हर चीज मुमकिन है। कोई कैसे किसी को लेके जाता है गुनाह की तरफ, उसका दिल लेके जाता है, تو لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر چکا, اب دنیا میں انسان آتا ہے, ہر بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا اس کو وہ وعدہ یاد ہوتا ہے. اور میں جب کسی نیو بورن بیبی کو دیکھتی ہوں نا تو میرا پتا ہے کہ دل چاہتا ہے, میں کہتی ہوں میں اس سے باتیں کروں, یہ اللہ تعالیٰ سے ہو کیا ہے, بتاؤ اللہ کتنے ہیں. آپ محسوس کیا کریں کبھی چھوٹے بچوں سے بات کر کے دیکھیں, آپ اللہ کا لفظ بولیں گے نا تو ایک دم دیکھے گا, کہیں اذان کی آواز آئے گی تو وہ بالکل خاموشی سے ہو جاتا ہے. کبھی تلاوت آپ چلا کے دیکھیں پھر بچوں کی آنکھوں کا حال دیکھیں, کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نیند میں بچے ہنس رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ پھر آپ دیکھیں کہ بچے کے فطرت پہ ہونے کی دلیل آپ نے نہیں دیکھی کہ مائیں 40 دن بچے کی پیدائش کے بعد صرف اس بات پہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ عین آدھی رات ہوتی ہے تو اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے ماں اٹھ تہجد پڑھ, فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے بچہ رونے لگتا ہے کہ نہیں. ماں کھانا کھاتی ہے بھی تھوڑا سا کھائی بچہ رونے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ اس کو اب کم کھاؤ. ہر چیز فطرت پہ ہے. میں نے دیکھا ہے مائیں خود بچوں کی روٹین خراب کرتی ہیں, رات دیر 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 تک ان کو جگاتی ہیں. کیوں؟ کہ یہ صبح دیر تک سوتا رہے. بچے رات جلدی سوتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں, ہر اذان پہ عموماً وہ اٹھے ہوتے ہیں. یہ فطرت پہ ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی کیا مانگتا ہے؟ صرف دودھ, فطرت ہے. ہم اس کو سکھاتے ہیں کوک, پیپسی, 7 اپ. فطرت کو مسخ کر دیا ہم نے. کوئی بچہ پہلے دن چاکلیٹ نہیں مانگتا. جب مائیں کہتی نا یہ بڑی چاکلیٹ کھاتا ہے اس کے دانت خراب ہو گئے ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ اس غریب نے تو پہلے دن ہی, کس نے کھلایا اس کو پہلی دفعہ؟ آپ دیکھیں جو لوگ بچپن میں نا سمجھی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ کو پیپسی کا گلاس لگاتے ہیں, تو بچوں کے چہرے کے ایکشنز دیکھنے والے ہوتے ہیں, برا سا منہ بناتے ہیں, بسورتے ہیں, ان کو بری لگتی ہے وہ جلنے والی چیز جو ان کی زبان کو جلاتی ہے. ہم آہستہ آہستہ ان کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں, پھر ان کو دودھ نہیں اچھا لگتا جب تک آپ اس میں پیپسی نہ ڈال دیں. ان کو میں سوچتی ہوں بچہ کھجور کیوں نہیں کھاتا. یعنی میں نے بڑی قریب سے دیکھا فیملیز کو کہ کھجور گھر میں آتی ہے پڑی رہتی ہے بچے نہیں کھاتے, مٹھائی آتی ہے پڑی رہتی ہے بچے نہیں کھاتے, کینڈیز چاکلیٹس آتی ہیں بچے کھا لیتے ہیں. فرق کیا ہے کہ ماں بھی نہیں کھاتی کھجور, ماں کو بھی پسند نہیں تھی بچے کو بھی نہیں ملی, مٹھائی ماں نہیں کھاتی تھی بچے کو عادت نہ پڑی. تو اصل بات کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پاک صاف, ہر بچہ ایک سفید کاغذ کی طرح پیدا ہوتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کو اس چیز کا یقین ہے کہ میں نے رب کی بات ماننی ہے. لیکن دنیا میں آ کے پھر اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں ملوث کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر بچپن کے بعد ہم سب اپنے اس وقت کو دیکھیں جو ہمارا موجودہ وقت ہے, اب جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائی تھی, ہم نے مختلف قسم کے گناہ کر کے اپنی اس چیز کو داغدار کر دیا. شاید یہی حکمت ہے کہ شروع کے تقریباً 1 سال سے 2 سال تک, پتہ نہیں مجھے صحیح نہیں معلوم, لیکن بچہ نہیں بولتا نا, حالانکہ آپ دیکھیں وہ سن رہا ہوتا ہے, وہ کھاتا ہے, وہ محسوس کرتا ہے, اس کو گرمی لگتی ہے, اس کو سردی لگتی ہے, اس کو درد کا احساس بھی ہوتا ہے, خوشی کا بھی ہوتا ہے, بچہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ شاید اسی لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی بات کی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہ باتیں کرنے لگ جائے کہ جو بڑے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. وہ تو پیدا ہوتے ہی تبلیغ کرنا شروع ہو جائے گا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب والحکمہ, اس نے مجھے کتاب اور حکمت دی. تو اسے کیا معلوم ہوا کہ جب دنیا میں آتے ہیں بالکل معصوم کورے کاغذ, آپ بچے کے چہرے پہ خوشی دیکھ سکتے ہیں, بچے کی شکل کیسی بھی ہو لیکن کشش کتنی ہوتی ہے, بھولا بھالا, دیکھو تو ہنس پڑے گا, پیار سے بات کرو تو ہوتا ہے, تکلیف لگی رویا, پھر اس کے بعد ہنسنے لگا, آپس میں بچے بڑھتے ہیں, کھیلتے ہیں, کھیلتے لڑائی ہوئی, ایک دم لڑائی ہوئی تو رونے لگے اور اگلے لمحے ٹھیک بھی ہو گئے. یعنی آپ اگر کمپیئر کر کے دیکھیں نا بچپن اور آج اس وقت جو ہماری عمریں ہیں جوانی کی یا آگے اس سے بھی, تو آپ دیکھیے کتنا گہرا فرق ہے. بچے فطرت پہ ہیں اس لیے اطمینان پہ ہیں, ان کے چہروں پہ اطمینان ہے, ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ماں نے ابھی تو دودھ پلا دیا ہے تو 2 گھنٹے بعد بھوک لگے گی تو کہاں سے پیوں گا. وہ یہ نہیں کہتے کہ اماں ایک فیڈر فریج میں بھر کے رکھ دو, مجھے پھر بھوک لگے گی تو میں کہاں سے پیوں گا. نہیں, آپ نے دیکھا بچہ دودھ پیتا ہے پیتا ہے, ایک دم جہاں اس کا پیٹ بھرتا ہے وہیں چھوڑ دیتا ہے, ماں پھر اس کے بعد زبردستی کرتی ہے تو وہ پھر خود ہی اس کو صاف کرنا پڑتا ہے, اگل دیتا ہے. तमा नहीं है उसके दिल में, हिर्स नहीं है उसके दिल में, है। लेकिन जो ही इंसान बड़ा होता है, ताकत भी आने लगती है, काम करने के काबिल होता है, फिर इंसान कहता है कि अब मैं खाऊंगा कहाँ से, अगर मैंने अल्लाह की बात मान ली तो मैं तो आज के दौर में तो मैं भूखा रह जाऊंगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में था, कुतिला लिंसानुमा अकफरा मिन ऐजी शैइन खलका, ये इंसान कत्ल किया जाए, यानी एक मुहावरा अरबी जुबान का कि इंसान को देखो, जब माँ के पेट में था तो मैं देता था रिस्क उसको, जब अल्लाह नहीं कह सकता था या रब नहीं कह सकता था, मैंने उसको सारी ज़रूरतें पूरी की, लेकिन जब बड़ा होता है तो फिर मसले तो में आ जाता है, ये हराम चीज़ है मैं कैसे छोड़ूं, भूखा मर जाऊंगा, ये चीज़ कैसे करूं। यानी आज अमूमन अगर हम देखें तो गुनाह जो जिसको हम तौबा पे बात कर रहे हैं, तो ये इसकी वजह क्या होती है, हमारा तवक्कुल ना होना। पहली तो बात देखिए, चलें एक थोड़ी सी हल्की सी डिस्क्रिप्शन कि गुनाह सबसे बड़ा गुनाह क्या है, ताकि पता तो चले ना बात क्या है, क्योंकि वही बात है ना कि सिर्फ बिजहालतन वाली कैफियत तो ना रहे कि पता ही नहीं था जी ये गुनाह है। जैसे मसलन अभी आपको बताया भी कि हर बच्चे की फितरत में अल्लाह को एक मानना है, तो सबसे बड़ा गुनाह क्या है, शिर्क। शिर्क क्या होता है, अल्लाह के हक को लेके किसी और को दे देना या उसके साथ किसी को शरीक कर देना। मसलन अल्लाह ताला भी मुझे नफा दे सकता है और फलां बुजुर्ग भी नफा दे सकता है, ये है शिर्क। अल्लाह ताला से भी डरना है और किसी और से भी डरना है। और आप देखिए कि बास लोग सारी जिंदगी सोचते रहते हैं इस चीज को कि मुझे शिर्क को छोड़ना है, अब मुझे अपने अकीदे को ठीक करना है, लेकिन शैतान क्या कहता है, अभी और सोच लो, और इतने में उनकी मौत आ जाती है। हत्ता इजा जा हदकुमुल मौत, इमाम इब्ने तैमिया हैं या गालिबन इमाम इब्ने कय्यम, उनका एक कॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है तलबीस इबलीस, शैतान किस तरह लोगों को ट्रिक करता है, तो उसके बारे में तो कहते हैं कि कितने ही यहूदियों और नसरानियों को शैतान ने इस्लाम कबूल करने से रोक लिया, क्या कह के, अभी और सोच लो, अभी और तहकीक कर लो, अभी और इसके बारे में सोच लो, यहां तक कि उनको मौत आ गई। यानी आप देखिए कि वो ये नहीं कहते इस्लाम ना कबूल करो, वो कहते अभी और सोच लो, सोच के करो, क्योंकि देखो फिर एक दफा अगर कबूल कर लिया तो फिर तुम पलट नहीं सकते, नतीजा क्या, वो मौत आ गई, किसको पता। आप देखिए कि अगर शिर्क हमारी जिंदगी में है और अगर उस पर मौत आ गई तो क्या बनेगा, लाइन अशरकता, अगर तुमने शिर्क कर लिया, यानी इंसान अगर शिर्क करता है उसके सारे अमल जाया हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कई नबियों के नाम लेके कुरान पाक में फरमाया कि अगर वो शिर्क करते तो उनके सारे अमल जाया हो जाते, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क करते तो उनके भी अमल जाया हो जाते। ये ऐसे ही ना जैसे पानी के ग्लास में एक चुटकी आप जहर की डाल दें या किसी गंदी चीज की डाल दें तो पूरा पानी का ग्लास जाया हो जाएगा, हम इसको फेंक देंगे, इसको पियेंगे नहीं। इसी तरह जिस बंदे ने अपने मालिक को नहीं पहचाना, वो किसी और को कहाँ पहचानेगा। अब देखिए कि एक शख्स हो, कोई भी बच्चा देख लें, अपनी माँ को ना माने, उसकी बात ना माने, उसको माँ ही ना माने, और बाकी सारे शहर की औरतों की इज्जत करे, खिदमत करे कि आंटी यू आर नाइस, आंटी यू दिस दिस दिस, क्या आप उसको अक्लमंद कहेंगे, आप कहेंगे सबके साथ तो इतना इसका अच्छा सलूक है, अपनी माँ को तो मानते ही नहीं है। अमूमन हम लोगों के किसी और बुराई को देखते हैं ना तो हमें वाकई गुस्सा भी आता है, हम उसके ऊपर दिल में जलते भी हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं कि भाई देखो ये मिसाल है, कई गुनाह है ना जो आम मारूफ गुनाह हमारी नजरों में लगते हैं, लेकिन शिर्क करता देख के ना हमारे माथे पे बल आता है। हम इसकी मिसाल मौजूद है, आप देखिए कि हम जिस माशरे में रहते हैं, आप देखिए कि चारों तरफ शिर्क है ना। क्या किसी चर्च के बाहर से गुजरते हुए मेरे दिल में मलाल होता, गुस्सा आता, दिल जलता, माथे पे तेवरियां आती हैं? और अगर ये सब कुछ होता है तो क्या मैंने अमली कोशिश की कि उन लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनियों की तरफ लाऊं? हम कहते हैं माइंड योर बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, और अकीदे की बात ना करो और अच्छी अच्छी बातों की बात करो। लोग कहते हैं ना ये बात, हाँ जी इंसान अच्छा होना चाहिए, अमल अच्छे करो, अकीदे से क्या। हालांकि आपको मालूम है 13 साल मक्का में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाए गए, 3 मजमून थे मक्का के 13 साल में, क्या توحید, رسالہ اور آخرہ. اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اسی طرح اس کا رسول بھی اس کے ساتھ اکیلا ہے. کوئی کہے کہ اب اس رسول کے بعد کوئی اور رسول ہے یا کوئی اس جیسا ہے, تو پھر وہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ زبان پہ تو ہے لیکن دل میں نہیں. اور تیسری چیز آخرت, جو یہاں کروں گی کل وہاں بھروں گی. تو لہٰذا انسان کو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بہت سارے گناہ ہوتے ہیں انسان کے, کبیرہ گناہوں کی. میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نام لینے کی ضرورت ہے کیا گناہ اور کیا نہیں گناہ. کوئی واقعی اتنا تو نادان نہیں ہم میں کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مثلا شراب پینا گناہ, زنا گناہ ہے نا. گناہ انسان کی فطرت, ہیومن نیچر بتاتی ہے گناہ. بس آپ دیکھیے کہ جیسے آج ہمارے مذہب میں ہے نا کہ اچھے کپڑے اپنے جسم کو ڈھانک چھپا کے رکھو. مثال ہے, کسی مذہب میں اس چیز کا تصور نہیں, حالانکہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. کوئی مذہب اگر الہامی مذہب ہے نا تو اس نے حیا کا درس دیا. اور اس کی بہت بڑی دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور حوا, جب ان سے ایک پھل غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, تو ان کے پھل کھایا تو اس کا اثر کیا نکلا, کپڑے اتر گئے. یاد رکھیے شیطان کا سب سے پہلا حربہ کیا ہے کہ انسان کے کپڑے اتارتا ہے, بے حیا بناتا ہے. اس کی بات مانیں گے تو سب سے پہلے بے حیائی آئے گی, بے پردگی آئے گی. اور میں جب پورے چاروں طرف پھیلے ہوئے ماحول کو دیکھتی ہوں نا, تو میں سوچتی ہوں کہ جو سب سے برا سلوک شیطان نے آج ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا نا, وہ یہ کیا کہ ہمارے لباس خراب کر دیے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ یعنی ان سوسائٹیز میں ہم دیکھیں, ہم جب بہت قریب سے کفر اور اسلام کے بیچ میں رہتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ سب سے بری چیز کیا ہوئی. ٹھیک ہے, دل میں اللہ کی محبت بھی ہوگی, ایمان بھی ہوگا, ہو سکتا ہے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن لباس خراب ہو گئے, حلیے خراب ہو گئے, بات کرنے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے. وہ ادب اور وہ سلیقہ جو اسلام نے دیا تھا ایک اسلام ہونے کے ناطے, وہ نہیں ملا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے شیطان کی بات مانی, اس نے ہمارا لباس اتروا دیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بہت سارے گناہ ہیں جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتی, کبیرہ اور صغیرہ. میری بات اصل اس وقت کیا ہے کہ جو ہو گیا, جو معلوم ہے, اب توبہ میں دیر کیوں؟ کیا کیا عذر دل میں آتے ہیں توبہ کرنے کے لیے, کیوں ہم توبہ اکثر نہیں کرتے, کیا سوچ کے نہیں کرتے؟ مثلا ایک خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں, آپ اس کو ٹپس پہ گن سکتے ہیں. یعنی میں توبہ کرنا چاہتی ہوں مگر کیوں نہیں کرتی. اب اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں ہر گناہ پہ, ہر ایک کے پاس مختلف حالات ہو سکتے ہیں. پہلی توبہ کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے نا شیطان کی طرف سے, یا ہمارے اندر کے جو نفس کے اندر شیطانی وسوسے آتے ہیں, وہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. آخر لوگوں کو بھی تو جواب دینا ہے. بعض گناہوں پہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اتنے پکے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا دل رو رہا ہوتا ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا, مجھے یہ چھوڑنا ہے, مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے, لیکن ایک قدم آگے جاتا ہے نا تو ساتھ ایک پیچھے آتا ہے, نہیں نہیں قوم کیا کہے گی, میرے خاندان والے کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا. آپ دیکھ لیجئے ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا یہ کام غلط ہے, ہم پھر بھی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ہے عذر کہ نہیں ہمارا؟ یہ رکاوٹ آتی ہے ہمارے دلوں میں کہ نہیں, کہ ہم نے اس گناہ کو نہیں کرنا لوگوں کے ڈر سے. ایک دوسرا خیال شیطان ڈالتا ہے توبہ کے راستے میں, وہ رکاوٹ کیا ہے؟ ہاں ہاں کروں گی, تھوڑا سا اور ٹائم گزار لو, تھوڑی مہلت اور, تھوڑا اور, کوئی بات نہیں, ابھی تو زندگی شروع ہی, ابھی بہت جینا ہے. مثلا آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ نماز کب شروع کریں گے, تو وہ کہتے ہیں وہ ذرا گرمی آ لیں پھر کریں گے, سردیوں میں وضو کرنا مشکل لگتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی حجاب کا کیا معاملہ ہے؟ وہ ذرا سردیاں آ لیں پھر شروع کریں گے, گرمی میں دم گھٹتا ہے. ہاں اچھا جی, بہت سارے لوگ کیا گناہوں کو یہ سوچ کے تاویل نہیں دیتے کہ ٹھہر جو ذرا حج کر لیں پھر کریں گے, ابھی تو کر رہے ہیں, کرنے دو, حج کریں گے اس کے بعد چھوڑیں گے. بعض بچیوں کو میں نے دیکھا وہ کہتی ہیں ہاں فلاں فلاں چیزوں سے ہم توبہ کریں گے لیکن ذرا شادی ہو جائے, अभी तो मंगनी होनी है, अभी शादी, अभी से हम इस तरह बन जाएंगे फिर तो अच्छे घर में रिश्ता नहीं होगा, अच्छा मियाँ नहीं मिलेगा, और इस तरह की बातें है ना, ये तावीलात। फिर एक और तावील जो इंसान के दिल में आती है वो क्या है कि जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, लो ये सब पागल है, ये सब कोई ऐसे ही है जो इनको नहीं पता, भले ये बात है तो जो अल्लाह इनको बख्शेगा वो मुझे भी बख्श देगा, है ना। ये चीजें यानी अंदर से आप खोद अपने आप को खुरेद के देखें क्या चीज है जो मुझे मालूम होने के बावजूद भी उस गुना को नहीं छोड़ने देती। एक और उजर है, बहुत मशहूर उजर, अल्लाह गफूर रहीम है। किसके लिए गफूर रहीम आपको मालूम है? आगे कुरान पाक में एक आयत आती है तो जिसमें जिक्र है कि कुछ लोग हैं जो अल्लाह के खौफ से डरते रहते हैं, रातों को उनकी क्याम की रातें होती हैं और वो खौफ से कांपते रहते हैं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इससे मुराद चोर डाकू जानी है कि ये गुनाह करके फिर डरते हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐ सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, इससे मुराद वो लोग हैं कि जिनके दिन रोजों से गुजरते हैं, जिनकी रातें क्याम में रहती हैं, इसके बावजूद उनके दिल खौफजदा रहते हैं कि न जाने रब हमारी ये कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसी का गुनाह करके अल्लाह से डरना और बात है, और किसी का ये सोच लेना कि बस, बाज लोग देखे कि गुनाह करके भी नहीं डरते। आप गुनाह का एक बहुत अहम असर जो शख्सियत पे आता है वो क्या है कि इंसान की झिझक उतर जाती है। ये भी शैतान के मुख्तलिफ मरहले होते हैं, कैसे थोड़ा सा इस पे भी देखते हैं। पहली चीज है कि वो बड़े से बड़े गुनाह को छोटा करके दिखाता है। जैसे अभी हमने बात की आदम अलैहिस्सलाम की और हव्वा की, सबको पता है ये मशहूर किस्सा है, कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हुआ क्या था कि अल्लाह ताला ने सारी जन्नत आदम और हव्वा के लिए हलाल कर दी। वकुला मिनहा, जहां से चाहो खाओ पियो, जितना चाहो खाओ, लेकिन वला तकरबा हाजिहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना जालिम हो जाओगे। अपने लफ्जों में आप कह सकते हैं ना, पूरी जन्नत हलाल थी और एक चीज हराम थी बस, और कहा इसके पास ना जाओ। अगर आप अकल से पूछें, इस्तेमाल करें, तो लगता है ना कि क्या हुआ था, इतना कुछ था तो इसको ना खाते, मुमकिन था ना इतना कुछ, और एक बात कहते क्या था, वो बहस नहीं है, वो दरख्त था, पौधा था, गंदम थी, चावल था, ये मसला नहीं है। मसला क्या है कि रब के हुक्म की बात कहाँ तोड़ी, शैतान ने उसी पे वार किया, उसको चैन नहीं आया कि इतनी चीजों में एक चीज है। और आप सूरत अराफ खोल के पढ़िएगा, पूरा वाक्य अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किया। शैतान आदम और हव्वा के पास आया एक बुजुर्ग की शक्ल में, बारिश, और कहने लगा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, आई एम योर वेल विशर, आई एम योर सिंसियर। ये लफ्ज याद रखिए, कभी कभी शैतान हमारे बिल्कुल करीब वालों के रूप में आता है, दोस्तों के रूप में आता है, घर वालों के रूप में आता है, और कहते हैं लो मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूं। कभी बीवी भी जब शोहर को गुनाह पे मजबूर कर रही होती है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये जुमला बोलती है ना, लो देखो मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूं, मान लो मेरी बात, आखिर मुझे भी तो पता है ना तुम्हें थोड़ी। इसी तरह हमारा मुआशरा हमें ये सिखाता है, लो हम तुम्हारे दुश्मन है, तुम हम पे शक करती हो। ये शैतान का सिखाया हुआ जुमला था, उसने कहा मैं बड़ा मुखलिस हूं, अच्छा चख लो इसको। आदम ने क्यों चखते, जब रब ने कहा था ना खाओ वो नहीं चखा, तो शैतान आपको पता है किस रास्ते से अंदर आया था, आरजू, तमन्ना दिलाई थी। शैतान का एक वार क्या है कि इंसान के दिल में आरजुएं डालता है, तमन्नाएं डालता है कि ये कर लो तो तुम ये हो जाओगे। और आरजू जो उसने डाली वो आज के दौर में भी बहुत सारे लोगों की कमजोरी, क्या कि तुम लंबी उम्र पाओगे, तुम हमेशा रहोगे, और दूसरा तुम फरिश्ता बन जाओगे। यानी लंबी उम्र की ख्वाहिश, आज अगर आपको कोई बता दे एक ऐसी दवा ईजाद हुई है उसको खा लो तो मौत नहीं आती, आप बताइए इस जुमले को सुन के कितने लोग हैं जिनके कान खड़े हो जाएंगे, कौन केयर करेगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो किसी हराम चीज से बनी है या हलाल से बनी है, कोई करेगा उसके लिए? कहेंगे मारो गोली, उम्र जिंदी लंबी पाओ। और शैतान ने यही धोखा दिया था आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कि देखो नऊज़ुबिल्ला सुम्मा नऊज़ुबिल्ला, अल्लाह ताला ने تمہیں کیوں منع کیے اس کے کھانے سے؟ کہ اللہ کو خوف ہے, ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں تم ہمیشہ نہ زندہ رہو اور اس کی خدائی اور بادشاہی پہ تم نہ برابر آ جاؤ, اور تمہیں انسانیت کے درجے سے اٹھا کے فرشتہ بنانا چاہتا ہے. جہاں خواہش آئی اللہ کا حکم بھول گیا. اپنی زندگی پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں, آپ سب بھی اور میں بھی, پوچھیے اپنے آپ سے, عموماً میں گناہ کب کرتی ہوں؟ ایک لفظ آپ کے اندر ضرور اٹھے گا اس کے جواب میں, جب کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جنتان, اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بات کر دی کہ جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے اپنے نفس کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا. کیا آج ہماری خواہشیں ہم سے بڑے بڑے گناہ نہیں کراتی؟ کبھی سوچئے انسان حرام میں کیوں پڑتا ہے؟ اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھا سٹیٹس, اچھے کپڑے, معاشرے میں عزت, یہ سب کیا ہے؟ خواہشات. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہشات کے پیچھے چلنا انسان کو ہوا, ہاویہ, جہنم کا ایک گہری وادی ہے ہاویہ, اس میں گرائے گا. کیوں؟ کہ یہ ہوا کہتے ہیں, عربی میں ہوا کہتے ہیں خواہشوں کو. یہ ہوا جو ہوتی ہے نا ہماری ایئر, یہ بھی اڑتی ہے نا, اسی طرح خواہشات بھی انسان کو اڑاتی ہیں. اور یہی ہیں وہ چیزیں, جہاں دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے وہاں فوراً اس کا ایک اثر دل میں آتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ رب کا حکم بھول جاتا ہے. کیا ہم بہت اچھے نہیں ہوتے عام زندگی میں؟ چلیے تھوڑے سے اس کو تقابل کرتے ہیں. عام زندگی میں ہم اچھے ہوتے ہیں, پانچ وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں, گھر بھی صاف ستھرا کرتے ہیں, بڑے آرام زندگی میں رہتے ہیں. لیکن اس دن کیا ہوتا ہے جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت آتی ہے, مثلا کوئی شادی کا موقع آ جاتا ہے, کپڑے بھی اس دن عام معمول سے اچھے پہنے جاتے ہیں, کھانا اس دن جو کھاتے ہیں وہ یادگار ہوتا ہے, اس دن نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں, اور اس دن ہمارے عملوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا زیادہ نافرمانیاں اسی دن نہیں کرتے؟ میں کسی اور کو تو چھوڑے, میں سوچتی ہوں کہ کسی بھی لڑکی کی شادی کا دن میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی کا ایک سب سے زیادہ گولڈن ڈے ہوتا ہے, ہے نا؟ اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا نا, یا ادھر سے یا ادھر, کتنا بگ چینج آتا ہے زندگی میں. آنے والی بہت ساری تبدیلیوں میں سب سے بڑی تبدیلی شادی ہے. اچھی جگہ ہو گئی تو اچھے دن مل گئے, بری ہوگی تو برے, اور اسی طرح. لیکن کبھی اور سب سے زیادہ انسان کو چیزیں بھی اسی دن ملتی ہیں, ہے نا؟ کپڑے سب سے اچھے ملتے ہیں, زیورات ملتے ہیں, گاڑیاں ملتی ہیں, گھر ملتا ہے, ایک شوہر ملتا ہے محبت کرنے والا, سب کچھ ملتا ہے, بلکہ ایک نیا لگتا ہے کہ نیا دور شروع ہو گیا. لیکن ذرا سوچئے وہ دن جس دن رب نے سب سے زیادہ دیا ہمیں, اسی دن سب سے زیادہ رب کے حکموں کو توڑتے ہیں. عام نمازیں پڑھنے والے اس دن دیکھیں گے نماز نہیں پڑھتے, عام طور پہ اپنے آپ کو ڈھکے چھپے رکھنے والے اس دن پورے ایکسپوجر کے ساتھ اپنے آپ کو سب کے سامنے پیش کرتے ہیں, ہمیں دیکھو. اس دن شادیوں میں آپ دیکھیے بیٹھ کے جتنی ٹیبلز پہ بیٹھ کے گوسپ, غیبتیں, برائیاں ہوتی ہیں وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی. دکھاوا, میوزک, مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم خود دیکھ لینا کہ جب کوئی ہمارے گھروں میں خوشی کا موقع آتا ہے, جب ہم پہ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں, تو عموماً اس دن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, کیا سوچتا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بارے میں کہ ان کو دینی ہے خوشی, کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ یعنی آپ بچے کو ایک بڑی اچھی چیز لے کے دیتے ہیں نا, ماں بڑی محبت میں جاتی ہے, ایک خوب اچھے برانڈ نیم کا سوٹ بچے کے لیے لے کے آتی ہے جوڑا, کہ اس کو یہ پہناؤں گی. اب ماں نے اس کو بڑے اچھے چاؤ سے پہنایا سفید رنگ کا کپڑا, بچہ گیا باہر مٹی میں کھیلنے لگا, اندر آتا ہے وہ کپڑے سارے مٹی سے بھرے ہوئے, ماں لگاتی ہے, کہتی ہے تمہیں دوں گی تمہیں یہ کپڑے, تم تو اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے, خبردار آئندہ تمہیں میں ایسے کپڑے نہیں لے کے دوں گی. میں سوچتی ہوں جب ہمارا رویہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو پا کے, उसकी चीजों को पाके, उसकी दुनिया में रह के, उसके खाए पिए को देख के हम जो हरकतें करते हैं, अल्लाह ताला क्या कहता होगा। ये तो शुक्र करें हम सब कि वो गैब में छुपा हुआ है, उसके चेहरे की गुस्सा हमें नहीं दिखता, उसकी नाराजगी नहीं दिखती, उसकी नजरों में हमारा क्या मुकाम है ये हमें नहीं दिखता। वरना मेरा हाल है कि एक दिन, एक एक वक्त का खाना हम इंजॉय नहीं कर सकते, जो हमारे गुनाह हैं, जो हमारे मामलात हैं, इतने गुनाह करते हैं फिर भी देता है। हम आज किसी के साथ कोई कोई अच्छा एहसान करें, एक वक्त वो हमारी बात ना माने ना, तो हम कहते हैं अच्छा वापस चलो जाओ। यानी कोई घर में आपके काम करती हो मेट, आप उसकी बहुत करें करें और वो भी बड़ी करें, एक मौके पे आप देखें अगर वो आपके आगे गुस्सा ही कर लेना कि मैं नहीं मानती, तो फिर आप देखिए कि हम उसको कितने दिन बर्दाश्त करते हैं। हम कहते हैं मैंने तुम पे ये भी किया, ये भी किया, भाग जाओ और आज के दिन मुझे नजर ना आना। हर गुना अल्लाह ताला की नाफरमानी अल्लाह से दूर करने वाली है, और अल्लाह ताला की रहमत जो हम पे बरस रही होती है उसको हमसे रोक देती है। और आप देखिए जब भी हम बात कर रहे थे ना कि जहालत से गुनाह करना और बात होती है, और जानते बूझते गुनाह को गुनाह समझ के करना ये एक अलग बात है। कैसे? एक मिसाल आपके सामने रखूंगी। बस आप देखिए कि आपके घर में एक बहुत खूबसूरत डिनर सेट है, आपको बहुत पसंद है। अब आपको बड़े खास मेहमान आते हैं, आप उसको निकालते हैं कि चले आज मैं इसमें खाना खिलाऊंगी। अब आपकी जो मेट है जो बर्तन धो रही है, आप उसको कहते हैं कि देखो बाकी सब तो बर्तन हैं लेकिन ये डिनर जो है ना इसको बड़ी एहतियात से धोना, ये बड़ा महंगा है या मुझे बड़ा अजीज है। कई वजूहत होती हैं, ये प्लेटें इनको धोना अच्छा। ओके अच्छा, अब आप देखते हैं अपने काम में मसरूम है वो बेचारी, बड़ी एहतियात से उसको पकड़ती है, उठाती है, और शायद वो इतनी ज्यादा एहतियात करती है कि उसके हाथ से प्लेट फिसलती है और जमीन पर गिर के टूट जाती है। आपने अपनी आंखों से देख लिया कि ये इसने जान के नहीं तोड़ी, कोशिश में थी लेकिन फिसल गई। गुस्सा तो आपको आएगा लेकिन उससे ज्यादा दुख होगा, अफसोस होगा, लेकिन आप कहेंगे चलो मुझसे भी टूटनी थी इससे भी टूट गई, कोई बात नहीं, आप उसको कम कहेंगे, दुख के अंदर खामोश हो जाएंगे। दूसरी सूरत है आप कहें देखो ये प्लेट है मुझे बड़ी अजीज है, इसको नहीं, इसको बड़ी एहतियात से धोना। ओके अच्छा बाजी कौन सी, ये वाली पकड़े और आपके सामने जोर से जमीन पे मारे, ये वाली प्लेट प्यारी थी, ओहो टूट दे, फिर ओ बाजी माफ कर दो अब नहीं करूंगी, अब माफ कर दो अब नहीं करूंगी, अब कर दो माफ नहीं करूंगी, और साथ ही पकड़े एक और प्लेट और उसको फिर जमीन पे मारे, माफ कर दो प्लेट नहीं। आप क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे तुम मेरा मजाक करती हो, तुम कहती क्या और कर क्या रही हो, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद ना मेरे सामने आना। जब हम गुनाह करते हैं हमें पता है हमारा रब इससे नाराज है, किताबों की किताबें हमारे पास, कैसेटों की कैसेटें हमारे पास, कंप्यूटर पूरा भरा हुआ है हमें नसीहत करने के लिए, और करते रहते हैं और फिर साथ कहते रहते हैं माफ कर दे हम नहीं करेंगे, माफ कर दे नहीं करेंगे, और फिर जान के दिखा दिखा के करते हैं, फिर ऐसे गुनाहों का क्या हो। ये तो अल्लाह की रहमत है, उसका नाम अल गफूर सत्तारुल उयूब, गुनाहों को माफ करने वाला। वरना हम जैसा कोई हो ना रब की जगह तो हमें कभी बर्दाश्त ना करें। क्या हम ऐसे घर में अपने ऐसे मुलाजिम को रहने देते हैं जो हमारी कोई बात ही ना माने? बस आप देखें कि आप किसी को अपने घर पे मुलाजिम रखें कि एक महीने बाद तुम्हें इतने पैसे दूंगी, अब सारा दिन वो काम जाके आपके नेबर के कर रहा है, मिसाल दे रही हूं, और नेबर भी वो जिसे आपकी लगती नहीं है, और जब महीना खत्म हो तो के बाजी पैसे दे दो, आप क्या कहेंगे? जे तुम, मैंने अपने लिए रखा था, तुम मेरी दुश्मन। यदि बाज दफा होती है ना, शराका होता है, शरीका होता है, किसी घर में रहते हुए देवरानी जिठानी किसी का भी हो सकता है, आपके लो बात तुम सारी उसकी मानती रही, पैसे मुझसे लेने आ गई, मैं नहीं दे रही। और हम क्या कर रहे हैं? बातें किसकी मानते हैं? शैतान की। और शैतान कौन है? इन्नहु लकुम अदुव्व मुबीन। बातें उसकी मानते हैं और खाते किससे लेके? रब से। किससे सब चाहिए चीजें? किसकी दुनिया में रह रहे हैं? रब की दुनिया में रह रहे हैं। तो असल बात क्या है, पूरी बात का खुलासा क्या है कि गुना हमारे और हमारे रब के बीच में रुकावट है। अगर हम कल क्यामत के दिन ये सोचते हैं ना कि रब हमसे राजी हो, तो फिर दुनिया में इख्तसाब करना पड़ेगा। हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना, हमारा दिल चाहता है कि वो भी हमसे मोहब्बत करे। क्यों सारा दिन हम लोगों से पूछते रहते हैं तुम मुझसे खुश तो हो, ठीक है मैं तुम मुतमईन हो मुझसे? क्यों? कि हम उनकी केयर करते हैं। اسی طرح اگر ہم اللہ کی کیئر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو اہمیت دیں، تو پھر ہم نے ہر اس چیز کو جو اس کے اور ہمارے بیچ میں آتی ہے اس کو روک دینا ہے. رمضان کی آمد ہے، آپ سب متوقع تھے کہ ہم رمضان پہ بات کریں گے، میں نے نہیں کی. کیوں؟ رمضان ایک مہینہ اور اسلام اللہ سے تعلق محبت 12 مہینے کی. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم رواجی مسلمان ہو گئے، ہمارا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے مہینوں کے ساتھ. رمضان آتا ہے تو اسلام آ گیا، مسلمان ہو گئے، بہترین طریقے سے مان لیا سب کچھ، اور رمضان گیا تو ہم پھر پلٹ گئے. پھر حج کا موسم آیا، حج کیا تو پھر ایمان آ گیا، اور حج سے آئے تو پھر تو اور ہی کھل گئے کہ اب تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. یعنی ایک کسی سے میری بات ہوئی، ینگ تھی بہت اچھی ماشاءاللہ، چھوٹے بچے تھے، تو حج کی ذکر ہوا، میں نے کہا آپ نے حج کیا؟ تو بڑے پیار سے اٹھلا کے کہنے لگی، ارے ابھی تھوڑی کریں گے، حج کر کے آئیں گے پھر گناہ کریں گے، سب ضائع ہو جائے گا، آخر میں جائیں گے بوڑھے ہو کے ایک آخری عمر میں جا کے حج کریں گے. میں نے کہا ویسے آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، آپ عقل مند ہیں، آپ ایسے نہیں ضائع کرنا چاہتی ہیں کہ ویسٹ ہوں گے، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے. کس کو پتا ہے؟ کیا مجھے یا آپ میں سے کسی کو ابھی یہ بھی پتا ہے کہ ابھی اس رمضان تک بھی جئیں گے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے پہلے کی کرنی ہے. ابھی رمضان تو آئے گا، وہ تو آئے گا، اس کی برکتیں تو ہم لیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی تو کچھ دیکھیے. میں نے سوچا تھا آج کے کل انشاءاللہ ایک اور جگہ ہے تو وہاں پہ ہم رمضان پہ تفصیل سے بات کریں گے. آج میں نے یہ سوچ کے آپ کے سامنے یہ موضوع رکھا کہ پہلے پچھلا معاملہ تو سیدھا کر لیں رب کے ساتھ. ہم روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم افطاریوں کے اندر اپنے نام لکھا رہے ہیں، ہم عمرے کے ٹکٹ لینے کی کوششوں میں، پہلے یہ تو پوچھیں کہ وہ قبول ہوگا بھی کہ نہیں، رب سے تعلقات تو نہیں بگڑے ہوئے، کچھ ناراضگیاں تو نہیں ہیں. دیکھیے اصل چیز قابلیت نہیں، قبولیت ہوتی ہے. کیسے؟ بس آپ دیکھیں کہ آپ کھانا پکاتے ہیں، آپ کی کسی سے انبن ہے، ہونی نہیں چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے آپ اس سے کلام بھی نہیں کرتے، بات چیت بھی بند ہے. آپ بہت اچھی چیز بھی پکائیں، خوبصورت ٹرے نکالیں، ڈش ڈالیں، اب اس میں وہ سب اپنا کھانا پکا ہوا لگائیں اور اپنے گھر سے کسی کو بھیجیں کہ یہ کھانا ان کو دے آئیے، بس دے آؤ کھانا ان کو، میں بات نہیں کروں گی. کیا خیال ہے؟ وہ خوبصورت برتن، وہ اٹھتی ہوئی خوشبو، وہ اچھی شکل دیکھ کے وہ رکھ لے گا آپ کا کھانا؟ آپ کی وہ جس کو آپ نے بھیجا وہ رکھے گی؟ وہ کہے گی جی یہ واپس لے جائیں، جب مجھے اس کو مجھ سے بات ہی نہیں کرنی، جب میرا اس سے تعلق ہی نہیں رہا تو میں اس کا کھانا کیوں کھاؤں؟ قبول نہیں کرے گی. آپ کی ساری قابلیت آپ کے ہاتھ میں واپس آتی ہے، وہ ٹرے واپس آ گئی. اور اس کے برعکس ایک اور صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ معمولی سی چیز پکاتے ہیں، کوئی دال سا، کوئی کڑی، کوئی ایسی چیز جس کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ میری دوست ہے، میں اس کے بغیر تو کھا ہی نہیں سکتی. آپ اچھے طریقے سے اس کو بنا کے تو فون اس کو کرتے ہیں کہ میں نے چیز تو کوئی اتنی بڑی نہیں بنائی تھی، لیکن میں تمہارے بغیر کھا نہیں سکی، میں تمہیں بھیج رہی ہوں. کیا کہتی ہے؟ جلدی سے بھیجو، میں انتظار کر رہی ہوں. خوشی سے قبول کرے گی. جیتے کہاں آپ؟ پہلے میں کہ دوسرے میں؟ پہلے میں تو آپ ہار گئے، حالانکہ آپ کی قابلیت زیادہ تھی، دوسرے میں قابلیت کم ہے، لیکن قبولیت ہو گئی. بڑے بڑے عمل کرنے سے پہلے ایک بار یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے رکھ لے گا، کیا میرا رب میری یہ نیکیاں قبول کر لے گا، کیا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میرے اور رب کے بیچ میں ایک بیریئر بن گئی، ایک رکاوٹ بن گئی، اس کو ناراض کر دیا. ہر انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے، یہ گناہ رب سے دور کرتے ہیں انسان کو، ہماری بڑی بڑی نیکیاں اکارت جاتی ہیں. اور نیکیوں میں اس سے بڑی نیکی کوئی کیا کرے گا کہ حرم میں پہنچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گرد میں آلود، یعنی جسم پہ مٹی ہے، سواری پہ بیٹھا ہے، ہاں اللہ کے گھر پہنچتا ہے، کیونکہ اس دور میں گھوڑوں پہ جاتے تھے. اسی کی مثال دی اپنے شک، بہت حالت بھی پتلی ہے سفر کی وجہ سے، مضطرب بھی ہے، بے چین ہے، اور جا کے خانہ کعبہ میں پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، آسمان سے فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا صادیک، نہ تیرا لبیک قبول نہ تیرا صادیک قبول. کیوں؟ فرمایا جو کھانا تیرے پیٹ میں ہے غزی بالحرام، وہ تو حرام کا ہے، تیری سواری حرام کی، تیرا مل بسہ حرام، جو لباس تیرا ہے وہ حرام کا، کیسے اللہ قبول کرے تیرا یہ لبیک؟ واپس چلا جا. उसको परवाह नहीं है कि फिर कौन कहाँ से आता है, फिर उसको परवाह नहीं है कि इसका क्या फायदा होता है। एक तरफ बंदा अपने नफ्स की माने, उसकी छोड़ ही नहीं रहा, और दूसरी तरफ रब को भी राजी करे कि चलो थोड़े से उसको भी बीच में दे दूं ताकि वो भी राजी रहे। हैरत नहीं होती? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अफतु मेनू नबी बा दिल किताबी व तक फरू नबी बात, तुम किताब के कुछ हिस्से पे तो अमल कर लेते हो, कुछ को छोड़ देते हो। फमा जजाओ मिनकुम, तुम में से किसी की क्या जजा हो सकती है इसके अलावा, इल्ला हिस्सुन फिल हयात दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी जलील हो जाओगे आखिरत में भी रुस्वा हो गए। अपनी मर्जी का दीन अच्छा लगा, इस्लाम का हुक्म, तो सारा दिन उस पर ही बातें करते रहे, और जो चीज अपने अमल में नहीं कहते, नहीं ठीक है इसको अब इस्लाम ही ना कहो, इसको आज दीन ही ना कहो। ये कौन सा दीन है? सहाबा किराम के पास तो ये दीन नहीं था। अबू बकर सिद्दीक को ये रास्ते क्यों ना मिले कि सारा साल हराम कमाएंगे, आखिर में कुछ खाना काबा में आके डाल देंगे, एक चादर चढ़ा देंगे, एक खिलाफ के पैसे देंगे, वो भी राजी ये भी राजी, एक इफ्तारी करा देंगे हाजियों को, सब मिल जाएगा। उनको क्यों ना ये रास्ते समझ आए जो आज के मुसलमान को समझ आए। मैं तो सोचती हूँ कि आज के मुसलमान से तो जरूरतमंद अबू जहल था, कहता था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा, तेरा रसूल, तेरी रसालत सच्ची, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं होता? कि मुझे पता है अगर मुसलमान हो गया तो कुछ पाबंदियां लगेंगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, गैर अल्लाह के सहारे तोड़ने पड़ेंगे, शराब छोड़नी पड़ेगी, जिना छोड़ना पड़ेगा, सूद छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, और अभी मैं इन चीजों के लिए तैयार नहीं, इसलिए नहीं होता। उसने अमल से जुरत का सबूत दिया। हम कहते हैं ये सब कुछ करो लेकिन मुसलमान होके करो, किस इस्लाम की तरफ हम लोगों को बुलाएंगे? ऐसा मॉडिफाइड इस्लाम, तब्दील शुदा, वो रहा ही नहीं। आप किसी को किसी चीज की दावत देते हैं, अगर वो चीज ही नहीं तो दावत किस चीज की है? यही वजह है कि आज हमारी तबलीग में असर नहीं, यही वजह है कि आज हमारी दावत पे कोई मुसलमान नहीं होता। इस्लाम कबूल किस पे करें? वो कहते हैं किधर है इस्लाम, वो इस्लाम जो तुम्हारी किताबों में पढ़ते हैं तुम्हारे अमल में नहीं दिखता। यानी एक नॉन मुस्लिम का मैं पढ़ रही थी, उसने कहा कि मैं मुसलमान हुई हूं मुसलमानों की किताब पढ़ के, मैं आज के मुसलमान को देख के मुसलमान नहीं हुई। क्यों? कि आज के मुसलमान का अपना इस्लाम खत्म है, उसका इस्लाम तो उसकी ख्वाहिशात का दीन का हो गया, उसने तो अपने आप को इस तरह खलत मलत कर लिया कि जो दिल चाहे मानो और जो दिल चाहे छोड़ो और उसके बाद जो दिल चाहे फतवा दो। कौन है जो तुम्हारी जुबान रोके? कुछ नहीं होता, वो भी तो करता वीलात। देखिए इंसान गुनाह करे और रब से डरे, अल्लाह ताला बचा देगा। जो बंदे ऐसे होते हैं ना, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे रास्ते बनाता है, खुद ही रास्ते निकलते हैं। लेकिन जब बंदा गुनाह करे, ये बात आपके याद रखने की है, गुनाह करे और ना डरे, या गुनाह को जस्टिफाई करे, लीगलाइज करे, फिर अल्लाह नहीं बचाता उस बंदे को। बंदर क्यों बने? असहाबा सब का किस्सा आप कुरान पाक में खोलते शुरू में ही आ जाता है कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने से मना किया था, नहीं पकड़ ली तो बंदर बन गए। मैं जब सोचती थी, जब बचपन में ये वाकया सुनती थी, तो बंदे के लाशौर में आता है कि कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था, मछलियां ही पकड़ी थी ना, उन्होंने कोई शराब तो नहीं पकड़ ली थी, या उन्होंने कोई बुराई और तो नहीं पकड़ी, इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? ये एक छोटे बचपन के जहन की बात बता रही हूं, लेकिन जब पढ़ा तो पता चला। और ये आप भी ये बात याद रखें जो मैं पहले गलती करती थी, कि चूंकि उन्होंने हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ ली थी इसलिए बंदर बना दिए गए, ये बात नहीं है, ये वजह नहीं है। क्या चीज रब को बुरी लगी? तावीलात। जुम्मे को जाके जाल डाल देंगे, हफ्ते को कुछ नहीं करते, इतवार को जाके पकड़ लाएंगे, और पूछते थे कोई ये क्या, तो कहते थे हमने तो कुछ नहीं किया। देखो जुम्मे को जाल डाला उस दिन तो जायज था काम करना, और इतवार को जाके पकड़ लिया, हफ्ते को तो हमने कुछ नहीं किया। तावील, दीन के अंदर गुनाहों को जस्टिफाई करना आज के दौर में ये मुमकिन नहीं। आज के दौर में ऐसा है, यहां रहेंगे तो ये करना ही पड़ेगा, ये जुमले हैं आज मुसलमानों के, जो उसको करीब है कि अल्लाह का ऐसा अजाब ना आ जाए कि शक्लें ही बदल जाए। और शक्लों से सुकून का जाना, खुशी का जाना, ये क्या बताता है? उनकी तो बंदर की शक्ल बन गई थी, क्या गुनाहों से इंसान के चेहरे पे हुसन रहता है? तावीलात इंसान के जिस्म दिल को तो गंदा करती है, उसके चेहरे पे बेसकूनी, ये डिप्रेशन क्या है? आप अगर डिप्रेशन को कह लेना, तो जो आज की बात में पहली बात की थी आपके साथ, दिल पे नुक्ते लगने वाली, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये डिप्रेशन है। दिल पे हर गुना, दिल पे एक स्याह नुक्ता है, जब इतने नुक्ते ज्यादा होंगे तो बोझ बनेगा। आज हम कोलेस्ट्रोल से तो बड़ा डरते हैं, ज्यादा हो गया, गुनाहों से कितना डरते हैं। जरा बाएं कंधे में दर्द हो तो कहते हैं डॉक्टर पे जाओ, हो सकता है कुछ दिल का दौरा ना पड़ जाए। ये नहीं सोचते कि इस बाएं कंधे पे गुनाहों की कसरत हो गई, इसको इसको हल्का करने की जरूरत है। और फिर कोई कहे तो कहते हैं हाँ छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं छुटेगा। आपको पता है गुनाह कैसे छुटता है? अरबी की एक बड़ी अच्छी मिसाल याद आ गई। अरबी में कहते हैं कि जो गुनाह है ना, वो दूध पीते बच्चे की तरह। आप सब सोचें, अगर आपके बच्चे फीड कराते थे आप उनको, तो जब 2 साल की उम्र में माँ ने बच्चे का दूध छुड़ाना होता है, अब वो बच्चा पैट मांगता है, माँ नहीं देना चाहती, फिर क्या होता है? फिर बच्चा रोता है, फिर माँ दे देती है, वो फिर आदी हो जाता है, फिर वो रोता है, करती है, कैसे छुटता है? एकदम छोड़ना पड़ता है। फिर रोए तो रोए, जो मर्जी एक दिन रोता रहेगा, कुछ उसको लगाओ फिर छोड़ देगा। और अगर जरा उसके रोने पे माँ दोबारा उसके मुंह को लगाएगी ना, वो कभी नहीं छोड़ता। तो वो उस जरबुल मिसल में क्या है कि अगर गुनाह छोड़ना है ना, तो एक झटके से छोड़ दो। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल से मत पूछें क्या होगा, कहाँ से खाएंगे। हम कहते हैं नहीं, कुछ हो जाए फिर करेंगे, अभी कोई दूसरा सहारा मिल ले फिर छोड़ेंगे। आप देखिए हाथ खाली तो करें, आप ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं? आपके हाथ खाली होते हैं, एक हैंडल पकड़ते हैं फिर दूसरा पकड़ते हैं, और आप पिछला ना छोड़ें तो अगला कैसे पकड़ेंगे? कदम जब रखते हैं तो हम क्या करते हैं? आप दोनों पांव जमीन पर रखें, चलें कैसे? चलते हैं, एक पांव उठाते हैं ना, आपके पांव नहीं उठाना, चलूंगी, इकट्ठे दो चला सकते हैं। इसी तरह से इंसान को पहले अपने दिल को खाली करना पड़ता है गुनाहों के कुत्तों से, गुनाह की तकलीफ चीजों से, रब की नाफरमानी से। हाथ पकड़ना उसका काम है, और यकीन करें कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा उसको अल्लाह मखरज देगा। व यरज़ुकहु मिन हैस ला यहतसिब, वहां से रिस्क देगा जहां से सोचा नहीं होता। वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह ताला से डरेगा, अल्लाह ताला क्या करता है? उसके मामले को आसान कर देता है, उसकी जिंदगी उस पर आसान कर देती है। असल बात यही है कि अगर वाकई इतने प्यारे दिन आने वाले हैं हम सब पे, मुझे खौफ है कि कहीं फिर इसी तरह से ना चले जाएं, तो लिहाजा ये दिन हमारी रिवाइवल के हैं। बैठ के अकेले में मैं भी, हर बंदा अपने आप को जब बिल्कुल तन्हा हो कुछ ऐसे वक्त में कि जब कोई पास चीज ऐसी ना हो जो तकलीफ दे रही है, तो सोचिए मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसा है? कोई रुकावट तो नहीं, कोई बीच में तार तो नहीं आ गया, जैसे वो दिल पे चर्बी आ जाती है ना, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं जो मेरी सारी बातों को जाया करा देगा? इंशाल्लाह जब तौबा करेंगे तो फिर तौबा कबूल। क्या करना पड़ता है? किसी मस्जिद में जाके मौलवी साहब को बताओ कि हम तौबा करने लगे, किसी प्रीस्ट की तरह जाके कन्फेस करो, पार्डन खरीदो, पैसे दो? नहीं, तौबा क्या है? अन नदमुत तौबा, शर्मिंदगी ही तौबा है। दिल में रियलाइजेशन हो गई ना कि ये मेरा काम बना था, तो फौरन वही माफ है, और अल्लाह ताला कितनी जल्दी कबूल करता है। बहुत ही प्यारा वाक्या है, और मेरा ख्याल है किसी पे हम खत्म करेंगे। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, बारिश नहीं हो रही थी, कोशिश की, दुआएं की, नहीं हुई, तो कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि सब मिलके खुले मैदान में निकल जाते हैं और वहां जाके दुआ करते हैं। आज भी ऐसे ही है ना, सलातुल इस्तिस्का पढ़ी जाती है जब बारिश नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को लिया और जाके दुआ शुरू कर दी कि अल्लाह बारिश बरसा। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा और वही की कि मूसा, दुआ तो सबने मांगी, लेकिन इस महफिल में कोई एक शख्स ऐसा है कि जिसने इतना बड़ा गुनाह किया हुआ है कि उसकी वजह से सबकी दुआ कबूल नहीं हो रही, लिहाजा बारिश नहीं होगी। हजरत, नाम नहीं बताया, अल्लाह ताला लोगों के पर्दे रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बता दिया, क्योंकि लोग मुंतजिर थे एक नबी के जरिए दुआ हो रही है और अब बारिश होगी, बारिश तो नहीं हो रही। तो कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम बता दिया कि ये मामला है, हम में से कोई एक शख्स ऐसा है जिसके गुनाह पे सबकी वजह उसकी दुआएं रुक गई। अब वो जिसने गुनाह किया होता है ना, उसको तो पता होता है, सारी दुनिया से छुपा ले, लेकिन बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का माज़ीरा। सूरत क़यामत में अल्लाह ताला फरमाते हैं हर बंदा अपने अंदर को जानता है, उसको अपने अंदर की पता है हालत में कैसा हूं, चाहे दूसरों के सामने उजर और बहाने करे। उस शख्स जिसने गुनाह किया हुआ था, उसको बड़ी शर्म आई अपने आप से कि मैं कितना बदबख्त हूं कि एक मेरी वजह से सब नेमत से महरूम हो गए, वहीं बैठे बैठे उसने कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं सच्ची तौबा करता हूँ। मैं नहीं, अपने दिल में बातें हो रही हैं, किसी को नहीं पता अंदर क्या जंग लगी हुई है। हर बंदे के अंदर जंग है ना लगी हुई, गुनाह और नेकी और सवाब की। अच्छा वो अंदर ये मामला हो रहा है और इतनी देर में बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला अभी तो आपने कहा था बारिश नहीं होगी, ये गुनाहगार बैठा है, अब बारिश भी हो गई। कहा हाँ मूसा तुझे नहीं मालूम, उसने बैठे बैठे तौबा कर ली, मैंने उसका गुनाह माफ किया, जब उजर रफा हो गया तो बारिश हो गई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आने वाले महीने में हम पे भी अपनी रहमतों की बारिश कर दे। पहले ही अपने जैसे घर साफ कर रहे हैं ना, अपने क्लोजेट साफ कर रहे हैं, अपनी चीजों को साफ कर रहे हैं, इसी तरह दिल को भी साफ करना है। जब दिल साफ होगा इसमें जगह बनेगी अल्लाह के हुक्म को मानने की। दुआ करें कि इस रमजान से पहले अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदल दे, हमारे दिलों को बदल दे अल्लाह सुभान व तआला। जरूरत है दिल को बदलने की, नहीं क्यों कि फिर देखिएगा ये रमजान आपकी जिंदगी में क्या बहारें लाता है। क्योंकि दिल घर गंदा होता है ना तो अच्छी से अच्छी चीज भी आ जाए घर में तो खूबसूरती नहीं देती, बल्कि घर गंदा हो तो मेहमान आ जाए तो कैसी एम्बेरसमेंट होती है। किसी को याद है महसूस किया, कोई अचानक आ जाए आपको नहीं पता, समझ नहीं आती किसको छुपाएं किसको रखें, हैं क्लोजेट्स बंद हो रहे हैं, अलमारियों को बंद कर रहे हैं, चादरें डाल रहे हैं, क्यों ये वो नहीं, नहीं बस करना था घर गंदा है। तो रमजान भी तो एक मेहमान है, वो एक मेहमान चल पड़ा हुआ है, हमारे घर पहुंचने वाला है। और अगर हमारे दिल के दरवाजे गंदे, हमारी खिड़कियां गंदी, हमारे दिल में बुग़्ज़, हमारे दिल में कीने, हमारे दिल में हसद और रकाबतें और नाफरमानियां और हराम की चीज़ें और रब की नाराज़गियां, खुशी होगी? इसीलिए देखिए कि लोग रमज़ान की आमद पे दो तरह के रवैये दिखाते हैं। कुछ तो खुशी खुशी कहते हैं रमज़ान आ रहा है रमज़ान आ रहा है, और कुछ बेचारे रोते हुए रमज़ान आ रहा है रमज़ान आ रहा है। कुछ को गम लग जाता है, कुछ को खुशी महसूस हो रही होती है। क्यों? गम किस बात का है कि घर साफ नहीं है। आप देखिए अमूमन मेहमानों के आने पे खुशी होती है ना, और खास तौर पे जिनको आप बुलाएं और चाहें उनके आए, लेकिन जब आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते तो वो एक मुश्किल लगती है। इसी तरह अगर दिल साफ हो गए तो फिर उसमें ज्यादा फायदा होगा ना। और दिल की अब जो आने वाला दिन आ रहे हैं, फिर इससे बेहतरीन कैसे फायदा उठाया जाए, थोड़ा सा हमारे पास एक गोल होना चाहिए ना। जैसे अभी हमने बात की ना कि तौबा करनी है और गुनाहों को छोड़ना है, तो देखिए गुनाह के बारे में मालूम हो कि गुनाह है, इसकी रियलाइजेशन पहला मरहला होता है। फिर उसके बाद दूसरा मरहला क्या है? इरादा। हमने इरादा करना है कि हम इस गुनाह को छोड़ेंगे। और तीसरी चीज क्या है? कोशिश। बहुत सारे लोग गुनाहों को छोड़ने के लिए इरादा तो करते हैं, पहले कुछ तो नियत की सीढ़ी पे अड़े हुए हैं। तीन सीढ़ियां जहन में रखें, नियत, इरादा, कोशिश, फिर हासिल होगा। इसमें एक टॉपिक हमारा वो भी है कि कैसे, यानी नियत से इरादे तक, ये इसी सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें से ये आपको नुक्ता बता रही हूं कि हमने तौबा करनी है तो पहले दिल में नियत करनी है। नियत कर लेंगे ना तो उसके बाद लोग नियत करके ही समझते नहीं मेरा बहुत बहुत इरादा है गुनाह छोड़ना है, हम तो बहुत देर बहुत चाह रहे हैं, वो नहीं वो पहला मरहला होता है भी नियत है। दूसरा कुछ लोग इरादे की सीढ़ी पे खड़े हैं, इरादे कर रहे हैं, कई साल गुजर गए अभी तक नहीं हो रहा। और तीसरी सीढ़ी कौन सी है? कोशिश। कुछ इरादा भी करके बैठे हुए लेकिन कोशिश करना भूल जाते हैं। अब देखिए कि गुनाह के तीन मरहले हैं उसको छोड़ने के, नियत, इरादा और कोशिश। हम सब ने अपने आप को पहचानना है, क्या मैंने अभी सिर्फ नियत ही की है इसीलिए शायद अभी तक नहीं वो काम में से छुट रहा, इसीलिए अभी हक की पुकार नहीं आ रही। क्या मैंने इरादा भी कर लिया उससे अगला अज़्म के दर्जे पे, और फिर तीसरी चीज है कोशिश। एक बड़ा मशहूर वाक्य है, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारी बहनों ने सुना होगा कि एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे और फिर तौबा करना चाहा, और फिर एक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐसी बस्ती में चले जाओ कि जहां नेक लोग रहते हैं। वो चल पड़ा, अभी बीच आधे रास्ते में था कि उस पर नजा की आलम आ गया, गिरा, कोशिश नहीं छोड़ी, थोड़ा सा अपने आप को आगे आगे बढ़ा पहुंचा और फिर जान निकली। जब उसकी जान निकली तो दोनों तरफ से फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी आ गए और जहन्नुम वाले भी। जहन्नुम वाले कहने लगे कि ये हमारा बंदा है, हम इसको लेके जाएंगे। क्यों? कि किसने 100 लोगों को कत्ल किया, क्योंकि उसने 99 पहले किए थे और 100वें ने जब उसको कहा कि तेरी तौबा नहीं है तो उसको भी कत्ल कर दिया। ये तो 100 बंदों का कातिल है, इसको जहन्नम मिलेगी। दूसरे ने कहा जो मर्जी हो, तौबा कर ली थी, ये जन्नत में जाएगा। ठीक है, क्या करें। एक अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा जो इनका फैसला करे। कहा ऐसा करो कि जमीन नाप लो, अगर इसके घर से चल के जहां तक ये पहुंचा ये फासला ज्यादा तय हो गया और उस बस्ती की यानी जिधर हिजरत कर रहा था तो वहां कम है तो इसको जन्नत मिल जाए, और अगर इधर कम है अभी उधर ज्यादा था तो जहन्नम मिल जाएगी। और आपको पता है कि जब वो जगह नापी वो बिल्कुल बराबर थी सिवाय उस एक बालिश्त के, जो उसने उस नज़ा के आलम में भी कोशिश नहीं छोड़ी, जन्नत मिल गई। क्यों? कि उसने देखिए पहले दिल में नियत की, फिर इरादे में बदला अपने आप, उसने एक गुना को, चल पड़ा। फिर वो जो एक सौवा कत्ल था ना असल में, वो भी उसकी एम्बेरसमेंट थी, मैं जन्नत में जाना चाहती, तुम कह रहे हो तुम जहन्नुम में जाओगे। ये भी उसके कोशिश, उसके अज़्म, उसके इरादे को दिखाता है नहीं मैंने ये चीज़ छोड़नी है, और फिर गया। और आखिरी वो एक स्टेप जो था वो कोशिश थी। कितना बड़ा सबक है हम सबके लिए, अपने आप को पहचानना, मैं कहाँ खड़ी हूँ, किस मंजिल पे खड़ी हूँ और कहाँ पे जा रही हूँ और किस तरह जाऊंगी। मसलन अब हमने सोचा कि हमने सच्ची तौबा कर ली, कर लेंगे, कुछ नहीं होती, उसका तरीका क्या है? उसका इलाज यह है कि हम अल्लाह के इस कलाम से दिल जोड़ें। इमाम इब्ने तैमिया का एक कौल है रहमतुल्लाह अलैह का, कहते हैं जिस चीज ने पिछले दौर में इस्लाह की थी यानी लोगों से गुनाह छुड़ाए थे, बाद वाले दौर में भी वही इस्लाह कराएगी, और वो क्या है? कुरान। वो हालात याद कीजिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो क्या अंधेर पड़ा हुआ था दुनिया में, शिर्क भी था, जहालत भी थी, कुफर भी थी, नाफरमानियां थी, जो आज के दौर में मॉडर्नाइज होने के लफ्ज हैं वो सारे उस दौर में थे। कैसे दिल बदल गए? इस कुरान को पढ़ा, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक्रा व रब्बुकल अकरम। हम सब अगर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये कुरान का महीना हमारे सामने आ रहा है। ये जो रमजान है ना, असल में इसकी सारी बहारें कुरान की वजह से हैं। तो आप सबके लिए मैदान खुला है, नियत कीजिए, कोशिश कीजिए, और अब साथ ही इस चीज की अमली कोशिश कर लें कि मैंने कम अज कम इस महीने में जो मेरी जिंदगी में आने वाला है मैंने एक दफा कुरान पाक को समझना, कम वक्त में, उस वक्त की अहमियत और उसकी नौयत के एतबार से जितना समझ सकती हूँ। और उसके लिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि अब तो घर घर ये मौका मौजूद है, मस्जिदों में मौजूद है, यहाँ भी मैंने सुना प्लेनो मस्जिद में भी हो रहा है, और इसके आपके जो करीब में है यानी ये इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। आपको जहां जिसकी बात समझ आती है वहां जाए, एक दफा सबके साथ मिलके कुरान सुने। घर में आप 10 दफा भी कुरान अकेले में पढ़ते हैं ना, उस तरह समझ नहीं आता जो एक महफिल में बैठ के बरकत उतरती है, क्योंकि उस वक्त फरिश्तों का नजूल भी होता है। उसका तरीका ये हो सकता है कि आप जो भी आपके घर के करीब जगह है आप वहां पे सुन सकते हैं, जरूर सुनिए। उस ये एक नेमत होती है, आप देखें ये अल्लाह की तरफ से हुज्जतें तमाम होती हैं कि इस दौर में और इन मुल्कों में जहां हम अक्सरियत में भी नहीं, वहां अगर अल्लाह ताला ऐसे इंतजाम देता है, अगर आप सब ये कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। अब आप कहेंगे फिर मसले शुरू होते हैं, दूर है, राइट नहीं, जॉब का मसला है, एंड सो ऑन। उसके लिए और ऑप्शंस की तरह एक ऑप्शन हमारे पास भी है, और उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से लेकर सदे तकरीबन 13 दिन बाद यानी 7 सितंबर जब होगी तो उसको हम लोग एक दौरे कुरान से पहले वेलकम रमजान का प्रोग्राम करें, यानी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने बात की इसी तरह मैं ह्यूस्टन से करती हूँ, और बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि मैं वहीं से आई हूँ। और उसमें यह है कि पूरा महीने का एक कोर्स होगा, शॉर्ट कोर्स है वो रमजान के नाते से यानी, और उसमें सिर्फ तौरे कुरान ही नहीं है बल्कि उसमें एक मैं तो ये समझती हूँ कि लाइफ सेवर जिसको कह सकते हैं ना कि एक जिंदगी बदलने का एक नुस्खा है। उसमें एक छोटी सी चीज जो हमने ऐड की है वो है इस्लाह के साथ रंग ना, जैसे एक छोटी सी बुक है इससे हमने थीम लेके, जैसे ये एक छोटी सी बुक है इसमें, तो इसमें ऐसा किया है कि रोज का हम एक पारा करेंगे और उस पारे में यानी ज़ाहिर है मैं वहां से बात करूंगी, मुख्तलिफ शहरों में बहनें अपने घरों में बैठ के ग्रुप्स में सुनेंगी। जैसे मसलन आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं आप इस शहर में मुख्तलिफ हिस्से से आए हैं ना, अब आपका दिल में आता है कि अच्छा ठीक है हमें भी सीखना है और सुनना है और शुरू से सुनना है, तो उसका पहला मरहला क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जिसको बता रही हूं ताकि फिर बाद में सवालत बहुत सारे जहन में आते हैं, वैसे तो इंशाल्लाह अगर आप बाद में अपने कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट दे दें तो हमारी ये सब चीज़ें वेबसाइट पे, और यानी उसमें एक बना हुआ है इसका फ्लायर भी और एक आडियो के में भी है, तो हम आपको ईमेल कर सकते हैं उसकी, इसके लिए आपके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अपने लफ्ज़ों में बताती हूँ कि उसका तरीका क्या है कि 7 सितंबर को हम वहाँ सेम आपका और हमारा एक ही टाइम है, 10 से लेके 1:30 बजे तक उस दिन रखा है क्योंकि लंबा टाइम होता है, उसमें हमने एक लंच रखा है वहां प्रोग। हमने भी खाने पे बुलाया है, हमने अपनी बहनों को भी यही कहा है कि आप में से जो बहनें इस हिस्से काम में, आप इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डालना चाहें और अपने घरों को कुरान के नूर से रोशन करना है, आप अपने घर में 7 सितंबर को एक प्रोग्राम रख लें, वो पॉटलक रख लें, वो खुद बना लें। मैंने देखा है जितनी खुशी से लोग खाना लेके आते हैं इतनी खुशी से और कोई काम नहीं करते। आप इशारा करके देखें कि मैं लंच कर रही हूँ, अगला सवाल करता है मैं क्या लाऊं, लाने दीजिए, मत कहिए नहीं मैं कर लूंगी। क्यों, आप खुद लाएं कहेंगे ना तो वो पता नहीं आएंगे, उनको जरूर कुछ असाइन करते हैं। मुझे नहीं पता आज समीना ने लोगों को असाइन किया हुआ तब इतने लोग आए हैं या खुद ही आए आपने पकाया, लेकिन इसका हमेशा फायदा होता है। बहरहाल आप 7 सितंबर को अपने घर में जमा हो जाएं, जैसे आज बैठे हैं दावत दी है बैठे, आपकी गेट टुगेदर होगी, 1.5 घंटे का तकरीबन लेक्चर होगा। वो उसके लिए देखें 3 जरिए हैं उसको सुनने के आपके पास, कंप्यूटर सब घरों में मौजूद है ठीक है, और उसमें एक बहुत फेमस वेबसाइट है पेलटॉक पे, एक रूम बनाना होता है, अक्सर लोगों के पास है नहीं भी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करके रूम तक पहुंच के, वो जाहिर है फिर जो अरेंज करेंगी, जो ये नियत करती है वो बाद में, अभी बाद में मेरे साथ बात करें, अपना नाम दे दें, हम उनको इन्फॉर्मेशन सारी ज्यादा देंगे, एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन देंगे, और उसमें क्या होगा कि आप लोग मिल के वो लेक्चर सुनेंगे। यहाँ अब हमें मालूम है कि मसलन ये समीना का घर है, यहाँ से समीना के साथ 10 लोग बैठ के सुन रहे हैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों का हमें भी पता होगा, वहां से आप लेक्चर सुनेंगे। आप जाहिर है कि आप सुन रहे हैं, आपके जहन में सवाल आ सकते हैं, कोई बात है पूछनी है तो आप यहां से कोई पूछना चाहता है तो माइक उसमें भी होता है, माइक पे आके या लिख के आप खुद भी कर सकते हैं, या अगर आपकी कोऑर्डिनेटर मसलन समीन है तो ये आपकी तरफ से सवाल टाइप करती हैं कि हमारे पास एक बहन का ये सवाल है, तो हम बिल्कुल ऑन एयर उसी वक्त ये बता सकते हैं भाई डेलस से किसी का ये सवाल है, यानी एक इंटरेक्टिव सवाल होगा। उसके बाद अगले ही दिन 8 सितंबर से फिर हम 10 से लेके 12:30, 2.5 घंटे का टोटल प्रोग्राम है, तो उसमें हम लोग फिर पहला पारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें रोज पारा एक होगा, लेकिन उसमें स्टाइल थोड़ा सा हमने मुख्तलिफ किया है कि जैसे हर पारे में से एक आयत चूज की है और उसको उस पर तदब्बर करना है, उसके बेस पे अभी जैसे मेरे पास थोड़े सैंपल के हैं जो मैं आपको बाद में भी इंशाल्लाह दिखा, एक पैकेज हम लोगों ने बनाया है जिसमें यानी 30 छोटी छोटी बुक्स को चूज किया है, घर पर सुकून कैसे करते हैं और जब बूढ़े हर पारे की वो उसी के दौरान ही मैं बताऊंगी उस पर, ये दौरे कुरान का हिस्सा होगा कि आज ये मौजू है इस पर हमने गौर करना है और कमिटमेंट करेंगे हम 5, ये जो इस्लाह के 5 रंग हैं या 7 रंग हैं, कि मसलन हमारे पास वक्त बहुत होता है, हम सोच हमें इस्तेमाल नहीं करना आता, छोटे छोटे चंक्स निकालेंगे हम अपने दिन के, एक नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 5 मिनट, एक काम करने से दूसरे के बीच के जो मिनट है, तो मतलब देखिए इतनी मोटी एक किताब है, अब ये कितने सफ़े हैं आप देखें, मेरा ख्याल है कि 15 से 20 मिनट में बंदा पढ़ सकता है, और लिखा हुआ भी इस तरह के मुख्तलिफ हैं, कुछ तो बहुत ही छोटी हैं इसमें, जैसे ये देखिए ये एक छोटी सी बुक है 3-4 सफ़ों की है, इन सबको मिला के कुछ छोटी कुछ बड़ी 30 बुक्स का एक पैकेज बना है रमजान स्टडी सर्कल। हम कमिट करेंगे कि आज हम सब बहनों ने आज कल से पहले इस बुक को पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है वो अल्लाह ताला करवाता है, फिर एक टाइम टेबल एक प्लानर बना रहे हैं ताकि आपको अपना टाइम भी यूज करना है। इसी तरह 30 हदीसें चूज की हैं, उसके अंदर भी बेस्ड यही है कि वो हदीसें हैं कि जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, कुरान पाक में ना वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन लाइक दिस, तो उसमें हमने सारी वो हदीसें जमा की जिसमें अल्लाह की मोहब्बत का जिक्र है। हम चाहते हैं ना अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, क्या ख्याल है, कोई चाहता है कि नहीं, पता नहीं किन से करता है। फिर इसी तरह 30 दुआएं चूज की हैं, उसकी ऑडियो सीडी है, यानी एक इज वेरी समझे कि इंटरेक्टिव है, आप सब जो एक ग्रुप में सुनेंगी तो आप लोग आपस में इस एक्टिविटी को करेंगे, और उसके अंदर फिर ये होगा कि जब अगले दिन आप आते हैं तो फिर जैसे समीना है या जो भी मतलब रोशन है कोई भी अपने घर में कर रहा है, आप में से भी कोई हो सकता है, मुझे आपके नाम नहीं आते असल में, तो फिर आप वो सारों का रिकॉर्ड रखेंगे, अच्छा इन्होंने ये कर लिया था इन्होंने नहीं किया था, तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास एक बेहतरीन आपके सामने एक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी कि हमने इस रमजान के एक एक लम्हे को कैसे इस्तेमाल किया, अच्छा किया कि बुरा किया। और रमजान की अहमियत पे कल इंशाल्लाह जो कैरल्टन मस्जिद में शाम को है ना वहां पे तफसील से बात होगी अल्लाह ने चाहा, और प्लस वो 7 सितंबर का जो वहां से लाइव आप सुनेंगे उसमें भी है। कंप्यूटर का ये दूसरा एक तरीका, रियल प्लेयर पे हमने एक लिंक लिया है, आप जस्ट अपनी स्क्रीन पे वो लिंक डालें, nurulquran.com और स्लैश डाल के तो आगे लाइव, और वो भी हमारे ये फ्लायर्स पे भी लिखा हुआ है, बेटा एक फ्लायर दिखाइएगा तो इसके जरिए। और तीसरा इससे भी आसान तरीका है कि आप फोन लाइन से भी सुन सकते हैं, एक फोन लाइन ली है जिसको आप, ज़ाहिर मोस्टली लोगों के पास वैसे ही फ्री है ना लॉन्ग डिस्टेंस, और वो नंबर कहीं किसी भी शहर का मिल जाता है, उसमें नहीं आप हमें फोन करके हमसे वो फोन नंबर लें, आप एन उस वक्त पे फोन करेंगे, एक कोड डालेंगे तो आप हमारे उस रूम में आ जाएंगे, तो उसमें भी यानी 100 के करीब भी कितने भी लोग उसमें आ जाते हैं तो आप अपने घर में फोन पे भी सुन सकते हैं। अब देखिए इससे ज्यादा आसानी क्या होगी, फबी हदीस इम्बादा हुई मिन, अल्लाह ताला कहते हैं इस बात के बाद अब कब ईमान लाओगे, हो सकता है ये दावत हमारी जिंदगी की एक लाइफ चेंजिंग दावत हो। अगर आप इवन कहीं और कर भी रहे हैं फिर ये हमारा मंडे से लेके सैटरडे तक चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, संडे हमने ऑफ दिया है क्योंकि घरों से कर रहे हैं, आने जाने का वक्त बचेगा, राइट के मसले नहीं। और पहले क्या होता था कि हम रमजान से पहले शुरू करते, मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह छठे साल से, मैं पांच साल इससे पहले छह दफा कर चुके हैं, ये सातवां दौर है कुरान है जो मैं करा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे एक्सपीरियंसेस को पाइल अप किया। पहले शुरू कराते थे तो ऑफकोर्स पहले शुरू करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें लोग अवेलेबल नहीं, जैसे आजकल के दिनों में अगर आप लोगों को रोज आने की कमिटमेंट करें किसी जगह मस्जिद में तो लोग नहीं आ पाते, और यही तो सबसे मसरूफियत के दिन होते हैं, समोसे बनाने, रोल बनाने, कबाब बनाने, आप कहते हैं पारा सुनो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब तीन छुट्टियां आती हैं सैटरडे संडे मंडे, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि उसमें टेम्पो टूट जाता है और लोग आते हैं मंडे को, अक्सर लोग फिर छुट्टी आते भी हैं तो वो लेजी हुए होते हैं, तो लिहाजा फिर इसको रमजान में शुरू, रमजान से हम चार दिन पहले शुरू करें ना, आठ को करेंगे इंशाल्लाह पारा, तो आठ के बाद नौ को छुट्टी, तो दस ग्यारह बारह तेरह चार पारे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली या 13 का रोजा है पहला या 14 का आपके पास, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह 12 अक्टूबर 28वीं या 29वीं होगी उस दिन, तो उस दिन तक में, और वो भी फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे को शुरू हो रहा है फ्राइडे को खत्म होगा। अगर आप बहनों में से जिसको इसमें दिलचस्पी है मजीद रहनुमाई, तो भी इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ पे रोकती हूँ, आप लोग फ्लायर भी हैं इस पे, डिटेल्स हैं, आप इसको देख के चेक करें लिंक्स को, और अगर आप मुनासिब समझते हैं अपना ईमेल या फोन नंबर एड्रेस दे दें, हम आपको अपनी लिस्ट में डाल देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होंगी करके देखिए। और अगर ये नहीं समझ आती तो जहां मर्जी करें लेकिन एक दफा करके देखें, कैसेट्स मौजूद हैं, सीडीज मौजूद हैं, लाइव हलकास हो रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के हो रहे हैं, आप लोग कैसेट से कर रहे हो ना, एक कैसेट से भी प्लेनो मस्जिद में एक हलका हो रहा है, लाइव भी ये लोग कर रहे हैं शायद, जो मुझे मालूम हुआ है, और भी जगह होगा, कहीं भी करें लेकिन जहां से उठने से पहले एक नीयत करके उठें कि मैंने इस वक्त को अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाना है, ताकि सबका अजर समीना ले जाए जिन्होंने जमा किया आपको, और अगर आपकी जिंदगी में ये हिदायत के फैसले शुरू हो गए तो इंशाल्लाह इसका असर सब तक जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें बेहतरीन मुसलमान बनाए। ये इसका फ्लायर है, इसका कलर भी ऑनलाइन आप इस लिंक पे जाके देखेंगे या ईमेल में हम भेजते हैं, और आप चाहें जहां तक इस बात को पहुंचाएं, हो सकता है इसमें से आपको फायदा ना हो तो किसी और को दे दें, हम क्यों बुखल करें, अल्लाह ताला तो यही चाहता है ना कि हम अपनी खैर को आगे पहुंचाए। चंद लफ्जों की दुआ कर लेते हैं इख्तितामी, ताकि फिर बाद में वक्त मांगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمان يا رحيم يا مالك يا قدوس ہم سب کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اس چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اللهم استر عوراتنا وآمر رواتنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله ہمیں معاف فرما يا الله ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ يا الله جو ہم نے زندگی جہالت میں گزار دی تو ہمیں اس پہ معاف کر دے یا اللہ ہمیں جلدی سے توبہ کرنے والا بنا या अल्लाह, हमें अपने इन गुनाहों के बोझ को उठा उठा के फिरने की बजाय इसको उतार फेंकने की तौफीक दे। या अल्लाह, वैसे तो गंदगी जरा सी लग जाए तो हम उसको फौरन धोते हैं। या अल्लाह, इसी तरह हमें अपने गुनाहों से घिन आने लगे, नफरत आने लगे, वहशत आने लगे। या अल्लाह, गुनाह करने के बाद हमारे दिल की वो हालत हो जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की हुआ करती थी। वो जाके चैन से सो नहीं जाते थे, उनको नींद नहीं आती थी रातों को कि अल्लाह गुनाह सोने नहीं देते। या अल्लाह, हमारी ये बेसुकूनियाँ, हमारी ये परेशानियाँ, हमारी ये टेंशन असल में हमारे गुनाह हैं जो हमें सोने नहीं देते। या अल्लाह, आज की रात सुकून की नींद दे, इत्मीनान की नींद दे, हम सारे गुनाहों से तौबा कर लें, फौरन इससे अपनी माफ़ी मांगें और एक नई जिंदगी शुरू करें। या अल्लाह, हमें नहीं पता कल हमारा क्या नाम होगा, हम जिंदा होंगे या मुर्दा। या अल्लाह, आज ही हिदायत के फैसले करवा ले। या अल्लाह, तौबा की तौफीक दे दे, अपनी जात पे तन्हा तेरे रब होने का यकीन दिला दे, तेरे नबी के साथ किसी का शरीक ना होने का यकीन दिला दे, और बात में और हुक्म में ए अल्लाह तेरी बात को मानने की, सुनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, मेरी ये जो बहनें बैठी हैं, इनके दिलों की जायज़ हाजात पूरी फरमा। मैं नहीं जानती इनके दिलों में क्या है, तो अपनी रहमत से इनको अता फरमा। जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार है उनको सेहत और आफियत दे, जो दुखी है उनके दुखों को दूर कर दे, जो बे औलाद है उनको नेक सालेहीन में से अता फरमा, जो हिदायत से दूर है उनको हिदायत अता फरमा, जिनको माली परेशानियां हैं उनको रिज़्क़ हलाल और फराख अता फरमा। या अल्लाह, हमारे शोहरों की जिंदगियों में, उनके दीन में, उनके ईमान में बरकतें अता फरमा। हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। हमारे माँ बाप को या अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह, अगर जिंदा हैं तो उनको इत्मीनान वाली, सुकून वाली, सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह, उनके दिल की बेचैनियां दूर कर दे, उनके बुढ़ापे को इत्मीनान वाला बुढ़ापा कर दे, और अगर दुनिया से चले गए तो या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह, हम खाते पीते हंसते बोलते हम क्या कुछ नहीं करते, हमें नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। या अल्लाह, हमें उनके हक में बेहतरीन सदका जारिया बना। या अल्लाह, हमें उस वक्त मौत देना जब तू हमसे राजी हो। या अल्लाह, गुनाहों के साथ मौत ना देना, नाफरमानियों की मौत ना देना। या अल्लाह, तेरे बंदे बन के तेरे पास आए। या अल्लाह, जिस तरह दुनिया में आए थे तो बेगुनाह थे, पाक थे, तेरी तौहीद पे जमे हुए थे। या अल्लाह, दुनिया से जाएं तो इसी तरह पाक करके भेजना, सफेद कागज की तरह हमारे दिल को साफ कर दे, गुनाहों के धब्बे दूर कर दे। या अल्लाह, इस घर में अपनी रहमतें नाजिल फरमा, अपनी बरकतें नाजिल फरमा। या अल्लाह, इनके बच्चों और शोहर और इन सब को तेरी रजा और आफियत के साथ रखना। और या अल्लाह, हम में से हर एक के घर को दारुल अरकम बना, वहां से हिदायत की शमें फूटें। या अल्लाह, मुसलमानों के हर घर को मस्जिद बना, हर घर को मदरसा बना, और कुरान का ये नूर हमारे घरों से फूटे। या अल्लाह, इस महीने में हमारे हर घर के अंदर से रहमतें और या अल्लाह, इस कुरान की आवाज़ें बुलंद हों, शैतानी आवाज़ों को दबा दे, उनको कम कर दे। या अल्लाह, जो नहीं मांग सके वो भी अपनी रहमत से दे। या अल्लाह, जो कमी बेशी होगी उस पर माफ़ फरमा। हम हमारे तमाम उसातज़ा कराम पे अपनी रहमतें फरमा, हमें उनके हक में बेहतरीन सदका जारिया बना। या अल्लाह, हमारे गलत कामों पे उनको ना पकड़ना, उनकी सेहत उनको आफियत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को बेहतरीन नेक लोगों जैसे दिल बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، اور سمینہ آپ کے گھر میں ہمیشہ ہی آ کے اچھا لگتا ہے مجھے، آپ کے لیے اللہ آسانی کرے، باقی آپ مجھے بھی اجازت دے دیں اور آپ لوگ بیٹھیں۔ سمینہ مجھے جانا ہے شام میں بھی، ٹھیک آپ سب جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، تو ابھی ہم نے کر بھی دی جی، ہمارے جو نہیں ہیں ادھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی شامل کرے اس میں، اور باقی یہ ہے کہ انشاء